సుర కామాది కల దల గంగనం మమ హృదయ కుంజ నివాస కరు కామాది కల గంజన
మన జాహి రాచం ఇలహి శోభ సహజ సుందర సావర
ముని జాహి శ్రాజన మునిర వర సరజ సుందర వర
కరుణా నిదాన సుజాన సూర శనె జానత రావర
కరుణా నిధాన సుజాన శ్రీల సహసు జానత రావర
ఏ భాతి గౌర అశీష సునసి సహిత హర సింహలి
ఏ భాతి గౌర అశీష సునిసి సహిత ఘర శ్రీ
తులసీ భవానీ పూజి పుణ ముదిత మన మందిర చలి
తులసీ భవానీ పూజి పుణి పుణ ముదిత మన మందిర చలి
శ్రీ రామ చంద్ర కృపాల భజన హరణ భవ భయ దారుణ
శ్రీ రామచంద్ర కృపాల భజమన హరణ భవ భయ దారుణ
శ్రీ
రామచంద్ర కృపాల భజమన హరణ భవ భయ దారుణ శ్రీ రామ శ్రీరామ్ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada.
आज के हमारे निर्माण भी पहुंची है और उनके परिवार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सारा प्रशासन जी की तरफ से है
और छोटा है
जो कि वो यहाँ उपस्थित है, उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु जी का स्वागत करें।
हरे कृष्ण
सब कत्ल होने से एक बजो ताली से बहुत सुंदर प्रसाद प्रभु जी की तरफ से आयोजित है। हमारे जेसीसी के अन्य मेंबर श्री बीसी सरकार का स्वागत करेंगे। श्री वासुदेव प्रभु, श्री प्रतिजा प्रभु, राकेश गंभीर
प्रभु,
डॉक्टर पॉल प्रभु, विजय सेठ प्रभु, सभी से अनुरोध है कि प्रभु जी का स्वागत करें, प्रभु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज रामकथा का शुभारंभ हो रहा है। आज का प्रसंग इस प्रकार रहेगा, सर्वप्रथम भूमिका, दूसरा दशरथ जी के पुत्र न होने का शोक, पुत्र श्री राम जन्म, विश्वामित्र जी का आगमन एवं तारका वध, अहल्या उद्धार, सीता स्वयंवर एवं विवाह और परशुराम संवाद, ये आज का प्रसंग रहेगा। मैं जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आज से रामनवमी उत्सव जो है उसके जो कार्यक्रम है आरंभ हो रहे हैं। 6 तारीख से 12 तारीख तक निर्भय कथा होगी और कथा के बाद प्रसाद होगा। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, डोनेशन जो आप देना चाहें या इसमें प्रसाद का आयोजन करना चाहें वो कर सकते हैं। 10 तारीख को सुबह यज्ञ होगा और शोभा यात्रा होगी मालवीय नगर में। 1 बजे प्रसाद और 2:30 बजे यात्रा आरंभ होगी और 15 तारीख जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह अभिषेक होगा, भगवान का अभिषेक होगा श्री राम का और प्रसाद होगा, सारा दिन भी प्रसाद होगा और शाम को पंडाल में प्रोग्राम होगा वैकुंठ प्लेयर द्वारा रामलीला और उसके बाद प्रसाद। तो अभी मैं कथा व्यास अनुरोध करूंगा कि अपने मधुर कंठ से एक ज्ञान भरी कथा जो है हमारे को सुनाएंगे श्री विजेंद्र नंदन प्रभु। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
इच्छा आवाज प्रकरण
एक कथा होगा।
हरे कृष्ण। हवा आ रही है ना, डायरेक्ट हवा आती है, इसको बंद कराओ, पूरा हवा से ना उड़ रहा है। ये पंखा,
ये वाला पंखा जो है ना,
एसी जो है ना, से गला बैठ जाएगा और हवा से पूरा ये उड़ रहा है।
एसी कम कर दो।
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम, सब बोले
रघुनंदन जय सिया राम,
जय 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 रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम।
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम।
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम।
वास से राम कथा आरंभ हो रही है और एक कथा चलेगी 12 तारीख तक और 10 तारीख को जैसे कि प्रभु जी ने बताया बहुत सुंदर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान भी किया जा रहा है। अब 15 तारीख को हम लोग बड़े धूमधाम से राम का जो जन्म है उसका उत्सव मनाएंगे। तो जैसे श्री के सभी भक्तों को धन्यवाद, भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे क्योंकि इसी उत्साह के साथ ये उत्सव मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य होता है। शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि अगर मनुष्य इतना समझ जाए कि हमारा भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, शिव इतना जाने से उसका उद्धार हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्ति होगी और इस संसार में दोबारा नहीं आएगा सिर्फ इतना जानने से। इसलिए परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरे जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाता है तो मेरे दिव्य धाम को वापस आता है शिव उत्सव मनाने से। यही कारण है क्योंकि भगवान राम का जो उत्सव मनाया गया आप सबको मालूम है कि इस पृथ्वी पर भगवान तभी आते हैं जब पृथ्वी में संत पुरुष और जितने मनुष्य हैं वो राजसों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, उन्हें कष्ट होता है, साधु संतों को तकलीफ होती है, गो हत्याएं होती हैं, राक्षस उपद्रव मचाते हैं, तो इस पृथ्वी पर भगवान उतार लेते हैं। तो आज से भगवान राम का जो इस पृथ्वी पर आना हुआ, किस कारण से आना हुआ, यही हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान का आना और जाना दिव्य होता है। जब रावण की उत्पत्ति, क्योंकि भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर आए क्योंकि रावण का जन्म हुआ सतयुग में, और सतयुग में एक बहुत बड़े ऋषि थे विश्रवा मुनि, है ना। तो सुमाली नाम का एक राक्षस था जो पाताल लोक में रहता था, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कैकसी। तो सुमाली ये चाहता था कि इसकी शादी जो है विश्वसुरा मुनि से कराई जाए, क्योंकि विश्वसुरा मुनि बहुत पावरफुल मुनि थे, है ना। और ऐसा ही हुआ, और कैकसी से और विश्वसुरा मुनि से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, दशकंधर अर्थात 10 मुंह वाला रावण, उसके बाद कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण के बाद विभीषण, और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई बहन सुपर्णखा, इस उत्पन्न हुए। तो जब रावण था, ये तीनों भाई मिल करके तपस्या की, और आप सब जानते हैं कि जो राक्षस हुआ करते थे ये सब तपस्या करने में माहिर थे, मास्टर थे, बड़ी कठिन तपस्या करते थे। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की, जिसमें कुंभकर्ण के बारे में बताया गया है कि वो 10,000 साल तक कठिन तपस्या की, जिसमें उसका एक नियम था कि गर्मी के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती थी तो उस गर्मी में भी, भयानक गर्मी में भी चारों तरफ आग जलाता था, और माने एक तो वैसे ही गर्मी पड़ रही है और आग जलाता था, और उसके बीच में बैठा रहता था। ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या, बिल्कुल अपने शरीर को क्या कर रहा था, वो तपा रहा था। ऐसे 10,000 साल तक उसने तपस्या की। रावण की तपस्या क्या थी कि 1,000 साल तक, 10,000 साल तक उसने तपस्या की, और हर 1,000 साल के बाद बिना कुछ खाए पिए रहता था, और खाने के बाद जब खाता नहीं था वो करता क्या था कि जब 1,000 साल पूरा हो जाता था तब अपना एक सिर काट करके चढ़ा देता था, बलि चढ़ा देता था। तो ऐसे 9,000 साल तक किया, लेकिन जब 10,000 साल पूरा होने लगा तो अपना अंतिम सिर, जब एक ही सिर बचा था ओरिजिनल, उसको भी जब काटने के लिए तैयार हुआ, जानते क्या हुआ, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो करके इतने खुश हुए दशकंधर से कि अब तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तो जो दशकंधर था दशग्रीव, वो अमर होना चाहता था, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने सीधा जवाब दे दिया कि देखो रावण, मैं खुद अमर नहीं हूँ और तुम्हें अमृत का हम वरदान कैसे दे सकते हैं, है ना। तब उसने कहा कि मुझे जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, इनसे हम नहीं मारे जाए। लेकिन वो एक चीज भूल गया, मनुष्यों को और बानरों को, भालुओं को पशु थे, क्यों, क्योंकि उनको तो कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए देवता गंधर्व किन्नर पितर लोग जितने लोग हैं उनसे हम न मारे जाएं, लेकिन मनुष्य से और बानरों से उसे नहीं मारा। और यही कारण है कि भगवान एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर उतार लिए। तो जब रावण को वरदान दे दिए ब्रह्मा जी, तब कुंभकर्ण के पास गए। जब कुंभकर्ण से वरदान की बात हुई तो सारे देवता जो है परेशान हुए कि कुंभकर्ण का जो शरीर था बहुत भयानक था, बहुत विशाल शरीर, उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत, और उसका खाने का बहुत उत्साह, मनुष्यों को पकड़ खा जाता है ना, बड़े बड़े भैंस जो भी है वो निगल जाता था, है ना। तो उससे सारे देवता घबरा गए थे। तो उन्होंने, सारे देवताओं ने मिल करके सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी से कहा कि उसके जीवा पे आप बैठ जाओ कृपा करके, है ना। और सरस्वती जी कृपा से उसने निंद्रा मांग ली, है ना, सोने की बात कि हम सोते रहें। तो 6 महीना वो सोता था, है ना, अच्छा मने जागता था। उसके बाद विभीषण का नंबर आया। तो जब विभीषण से बात हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा क्या, तुम क्या चाहते हो? तो विभीषण भगवान के भक्त साधु पुरुष थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कभी भी विचलित न हो, हम हमेशा धर्म के अनुसार कार्य करें और धर्म के प्रति रुचि हमारी क्या रहे, बनी रहे। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग है, उसकी कला, उसका जो ज्ञान है, ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान मुझे स्वतः आ जाए, हमें ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना न पड़े, स्वतः उसका ज्ञान हमको हो जाए, ये वरदान विभीषण ने मांगा। तो ये तीनों भाई वरदान जब प्राप्त कर लिए, तब रावण और कुंभकर्ण ये अत्याचार करना आरंभ किए। विभीषण तो साधु पुरुष था, वो तो भगवान की भक्ति करता था, तो उपद्रव में साथ नहीं देता था। लेकिन रावण का जो अत्याचार है, उससे सारे देवता परेशान हो गए। रावण ने सबसे पहला अगर लड़ाई किया तो जानते किसने, किससे किया? अपने बड़े भाई कुबेर से। जो कुबेर हैं, कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, तो उनको ही आक्रमण किया। और उस समय ब्रह्मा जी ने कुबेर को लंका में रहने की व्यवस्था की थी, लंका में रहते थे वो कुबेर जी, है ना। तो रावण ने क्या किया, क्योंकि कुबेर के पास एक पुष्पक विमान था, तो कुबेर वैसे भी धनवान थे, है ना, और जब पुष्पक विमान से चलते थे तो रावण की जो माता थी कह किसी कि बेटा तुम्हें वास्तव में ये जो पुष्पक विमान है तुम्हारे पास होना चाहिए, है, क्योंकि कुबेर के पिता तो एक ही थे विश्वा मुनि, लेकिन माता अलग थी, है ना, तो सौतेला भाई लगते थे, ऐसा था। तो कैकसी के उत्साह में रावण आ गया, अपने भाई पर ही अटैक किया और उनको पराजित करके पुष्पक विमान का कलिया छीन लिया और उनको कहा कि आप लंका से भी निकल जाओ, लंका में हम रहेंगे, इतनी दिव्य जगह ये आपके लिए शोभा नहीं देती। अपने बड़े भाई को लंका से निकाल दिया, है ना। इतना रावण, अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने भाई के साथ इतना अत्याचार कर सकता है तो दूसरे पे क्या उसने शत्रुता की। तो ये जो लंका नगरी है, बहुत ही सुंदर विश्वकर्मा जी ने उसको बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया था, वो तो आगे चल कर के इसका प्रसाद वर्णन करेंगे। अब फिर रावण अत्याचार करना शुरू किया और इतना भयानक वो अत्याचार किया कि सबसे पहले इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनको परास्त किया, है ना, बेदखल कर दिया, है ना। और जितने वरुण देवता, जल, जो जल के देवता हैं वरुण जी, उनको, पवन देवता हनुमान जी के पिताजी पवन जी, ये जितने भी देवता हैं सबको पराजित करके और अपने लंका में बुला लिया था, बुला लेता था और सबसे काम करवाता था, जैसे अग्नि देवता से रसोई में काम करवाता था, कहता सब्जी काटो आप लोग काम करो सब, पवन देवता से झाड़ू लगवाता था, बहुत अत्याचार किया। अब आप खुद समझ लीजिए, जब देवताओं की हालत थी तो पृथ्वी पर रहने वाले जो साधु संत थे उनकी कितनी दुर्दशा थी, सब परेशान हो गए थे। यहाँ तक बताया गया है कि एक यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ का जब पता रावण को चला तो वो अपने पुष्पक विमान से वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे इंद्र, कुबेर, यमराज है ना, कई श्रेष्ठ देवता वरुण जी ये सब थे, लेकिन जैसे उन सबको पता चला कि यहाँ पर रावण आ रहा है ये सब छिप गए। कैसे छिप गए? जो यमराज थे वो कौआ बन गए है ना, जो वरुण जी थे वो हंस बन गए है ना, इंद्र जो थे वो मोर बन गए, सब अपना अपना रूप धारण कर ले रावण के डर से। सोचने वाली बात है इतना। जब रावण वहाँ देखा कि यहाँ तो कोई देवता नहीं है, हमको जो सूचना मिली गलत सूचना थी, जब सूचना सही थी अब वो लोग भेषी बदले तो रावण क्या करे तो वहाँ से रावण वापस चला गया। जब रावण वापस चला गया तब लोग अपने रूप में आए तो यमराज ने कौवे को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सांसारिक रोग नहीं लगेंगे, इसीलिए कौआ को कोई रोग नहीं लगता और तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक कोई मनुष्य न मारे। अर्थात कौवे की मृत्यु आदमी अगर मारे तभी मरेगा, है ना, अदरवाइज वो जल्दी मरता नहीं, इसकी उम्र बहुत होती है, है ना, उसको वरदान प्राप्त यमराज का वरदान प्राप्त है ना। वरुण जी ने जो हंस का रूप धारण किया था है ना, उन्होंने हंसों का आशीर्वाद दिया क्या से तुम, तुम्हारा जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण खो जाओगे। ये पहले पिंक कलर की हुआ करते थे हंस, फिर सफ़ेद हंस होने लगे है ना। कुबेर जी गिरगिट बन गए थे तो उनको उनको वरदान दिया, वो गिरगिट भी रंग बदलता है और इंद्र चुकी मयूर बने थे, मोर बने थे तो उनको भी सुंदरता बढ़ा दी। तो इस तरह से रावण का अत्याचार जब बढ़ा तब सारे देवता जो है ये परेशान हो गए थे। तब भगवान आने का एक तरह से भूमिका तैयार हुआ कि अब हमारे भगवान यहाँ प्रकट होंगे। तो अयोध्या में राजा दशरथ, महाराजा दशरथ बहुत ही बलवान राजा थे, अब पूरे विश्व के राजा थे, जिसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता है, पूरे विश्व के राजा थे और 60,000 साल के हो गए थे लेकिन उनको एक भी पुत्र नहीं हुआ था और बहुत कष्ट में थे। और बताया गया है शास्त्रों में कि उन्होंने कितनी रानियों की शादी की थी। वास्तव में बताया गया है शास्त्रों में जो हमने पढ़ा अभी कि उनके 353 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 353 रानियां थी, जिनमें ये तीन रानियां प्रमुख थी, प्रधान रानी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी लेकिन उसमें तीन प्रधान थी है ना, रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती। तो महाराजा दशरथ के 353 रानियां थी जिसमें तीन रानियां जो थी वो प्रमुख थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब आप कहेंगे, सोचेंगे कि ये 350 रानियां कैसे हैं? तो आप सबने परशुराम जी का नाम सुना होगा। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि इस पृथ्वी पर हम क्षत्रिय का वंश खत्म कर देंगे, किसी क्षत्रिय राजा को हम रहने नहीं देंगे। इसलिए ढूंढ ढूंढ करके क्षत्रिय राजाओं को उबारना शुरू किए। तो महाराजा दशरथ भी क्षत्रिय राजा थे, वो कैसे बच गए? इसलिए बच गए कि परशुराम उस राजा को नहीं मारते थे जो स्त्रियों के बीच में घिरा रहता हो। एक राजा था जिसका नाम था नारी कवच, है ना। उनको जब मारने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, कई स्त्रियों को चारों तरफ से खड़ा कर दिया, अब बीच में खड़े हो गए। तो परशुराम उनको छोड़ दिया और महाराज दशरथ कई बात मालूम थी, इसलिए जब भी महाराज अयोध्या की तरफ से परशुराम फरसा लेकर निकलते थे और उन्हें पता चल जाता कि राजा थे, दूत उनका पता करते थे। उसी समय अपना एक स्वयंवर रचा, माने शादी का विवाह का प्रोग्राम बना लेते थे। तो जब परशुराम जाते थे तो देखते थे शादी कर रहे हैं, विवाह में फंसे हैं। ऐसे साढ़े तीन सौ बार परशुराम जी टकराए उनके महाराज, और 350 बार जितनी बार उमले वो शादी करते ही मिले, इसीलिए बच गए। ऐसा बताया गया, मैंने पढ़ा है बहुत सुंदर। भाई इस्कॉन ने किताब लॉन्च की है, उसमें हमने पढ़ा है। तो इस तरह से 353 रानियों के रहते हुए भी उनसे एक भी पुत्र नहीं हुए। तो कष्ट तो हो गए क्योंकि उनको भी ये चिंता थी कि किसी प्रकार से हमारा कोई वंश चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत ही अच्छे सलाहकार मंत्री थे, जैसे वशिष्ठ जी थे, गुरु वशिष्ठ है ना। उन्होंने वामदेव जी सबको, जितने उनके सलाहकार थे सबके सामने उन्होंने एक जिज्ञासा की कि आप लोग कोई उपाय बताइए। तो वामदेव जी और वशिष्ठ जी ये सब कहे कि इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि आप अश्वमेध यज्ञ जो है आरंभ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ, ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये बहुत ही बड़ा और पवित्र अश्वमेध माना जाता है। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसमें 400-500 सैनिक उस घोड़ा के सुरक्षित करने के लिए जाते हैं और पूरे विश्व घोड़ा भ्रमण करके आता है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है उन्होंने आरंभ किया बलदेव जी। तो वशिष्ठ जी सारी तैयारी की, पूरे विश्व से बड़े बड़े राजाओं को सबको बुलाया गया, सब बड़ी अच्छी व्यवस्था करके अश्वमेध यज्ञ की जब बात हुई तो जो सुमंत्र जी थे उन्होंने एक कथा सुनाई, कहा कि जो ऋषि जो मुनि हैं वो जब आएंगे है ना तो वही ये यज्ञ करा सकते हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ है ना। तो अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने का, अब ऋषि सिंह की को कैसे लाया जाए है ना, इसके लिए उन्होंने बहुत सरल उपाय बताया। क्योंकि हे राजा आपके जो परम मित्र हैं रोमपाद जी है ना, रोमपाद जी बहुत बड़े महान राजा थे, लेकिन एक बार क्या हुआ उनके राज में अकाल पड़ गया है ना और वर्षा नहीं हुई जिससे अनाज की उत्पत्ति नहीं हुई और पूरा अकाल पड़ गया। तो लोग पूरी प्रजा जो है त्राहिमाम करने लगे, रोमपाद बहुत परेशान हुए है ना। तो उनको उनके मंत्रियों ने पंडितों ने उनको आशीर्वाद दिया कि तभी समूह आइडिया दिया, विचार दिया, विचार विमर्श करके बताया कि यदि आप मृगी ऋषि के जो पुत्र हैं ऋषि सिंह जी, अगर आप उनको किसी तरह से अपने राज में लाएंगे तो वर्षा होगी, लेकिन उनको लाएंगे कैसे है ना। तो उन्हें लोगों ने एक तरीका बताया कि देखिए जो मृगी ऋषि हैं बहुत ही कड़क ऋषि हैं, बहुत सिद्धांत के पक्का, और अपने पुत्र ऋषिंग को जंगल में कुटिया बना करके जहाँ रह रहे हैं, आज तक उन्होंने किसी स्त्री को देखा नहीं, और अनाज क्या होता है उनको पता नहीं, बस फल फूल खा के रहते हैं, दूसरे को उन्होंने देखा नहीं। तो अगर जो आपके राज्य की जो खूबसूरत स्त्रियां हैं जिसे वेश्या कहते हैं, अगर खूबसूरत वेश्याओं को भेज करके उनको अगर आप बुलाएंगे तभी वो आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने राय दिया। तो रोमपाल जी ने क्या किया, तुरंत जो उनके राज्य की सबसे खूबसूरत स्त्रियां थी उनको भेजा, और उनके वो लोग ऐसी घर लेके गए थे कुटिया, जैसे विमान जैसा उड़ती हुई कुटिया, ऐसी कुटिया गए जो उड़ता था, है ना, एक कमरा जैसा था वो कुटिया, उसमें वो उड़ता था फ्लाइंग करके, तो उसी कुटिया को लेकर को गए, वो जो औरतें थी स्त्रियां थी बहुत खूबसूरत स्त्रियां, वो लेके गए उनको। जानते हैं कि जो ऋषि सिंह का जो मृग ऋषि का आश्रम था उसके थोड़ी ही दूर पर उन्होंने अपना कुटिया जो यहाँ से घर लेके गए थे उड़ा करके वहाँ पे जगा दिया, और इंतजार करते रहे कि श्रृंग ऋषि किसी तरह से आए यहाँ पे। ऋषि सिंह जो है ऋषि वो वहाँ पे घूमते टहलते उनकी कुटिया के पास पहुँच ही गए, तो पहली बार उन्होंने देखा तो वो ये नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कितने सुंदर कोमल ये भी कोई पुरुष होंगे, क्योंकि स्त्री को जानते नहीं थे कि स्त्री भी कोई होती है, लेकिन उनकी सुंदरता से उनकी मधुर भाषा से है ना, फिर उन लोगों ने उनको मिठाई खिलाई, तो जब वो मिठाई खाना शुरू किए तो वो भी सोचे कि ये कोई फल है, उनको ये नहीं पता था कि ये मिठाई भी कुछ चीज़ होती है, उन्हें मिठाई कोई फल समझा कि फल के लाओ कुछ कहिए किसी अलग किस्म की मिठाई होगी, है ना, तो उन्होंने फल और मिठाई खाई, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि आप कृपा करके हमारा ये असली घर नहीं है, हम लोग जहाँ से आए हैं अगर आप वहाँ चलेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, इतना कह करके उन स्त्रियों ने क्या किया, उनका आलिंगन किया, और आलिंगन करने के बाद वो वहाँ से फिर अपने कुटिया में चले गए। अब जो ऋषि श्रृंग मुनि हैं उनको उनको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उनके हृदय में जो काम भावना थी वो अंकुरित हो गया, तो उनका मधुर मुस्कान, उनका आलिंगन का आनंद, उनकी सुंदरता से वो इतने बेचैन हो गए कि रात भर उनको नींद ही नहीं आई, उन्हीं के बारे में सोचते रहे कि कैसे पुरुष थे, उनको पुरुष रहे कैसे पुरुष, तो मैंने पहली बार ऐसा एहसास हुआ, तो उनसे रहा नहीं गया, जैसे सुबह हुआ फिर उनके पास कुटिया में गए, तब उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि आप हमारे साथ चले, हमारे राज में जहाँ से हम आए हैं आपको वहाँ ले चलेंगे। तब उन स्त्रियों ने क्या किया, ऋषि सिंह मुनि को ले करके अपनी कुटिया बढ़ा करके आकाश मार्ग से ले आए रोमपाद के राज में। तो जैसे ही गंगा के ऊपर से वो आना शुरू किए और उसी समय बारिश हो गई, इंद्र प्रसन्न हो गए और खूब बारिश हुई, अब पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई सिर्फ ऋषि सिंह के आने से। तो ऋषि सिंह को रोमपाद जी ने क्या किया, उनकी एक पुत्री थी शांता उसका नाम था, उसके साथ शादी कर दी। तो सुमंत जी भी कथा सुना रहे थे महाराज दशरथ से, तो उन्होंने बताया कि हे महाराज दशरथ ये जो शांता है वो आप ही की पुत्री है, वास्तव में शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी, लेकिन रोमपाद का कोई वंश नहीं था, इसलिए रोमपाद ने महाराज दशरथ से मांग लिया था कि पुत्री आप मुझे दे दीजिए। तो वो कहे कि एक तरह से ऋषि सिंह जो है आप ही के दामाद ही है ना, असली दामाद तो आप ही के हैं, है ना, तो इसलिए आप जाइए रोमपाद जी के पास और ऋषि सिंह ऋषि को जो है लेके आए। तब महाराज दशरथ रोमपाद के घर राज में जाते हैं और महाराज दशरथ का बड़ा स्वागत किया जाता है रोमपाद जी के द्वारा। और उस स्वागत के बाद फिर शांता का चूंकि विवाह कर दिया था रोमपाद जी ने, तो शांता और ऋषि सिंह जी ये कहाँ पे आए, अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के फिर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तब इन्होंने कहा कि हमें पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब पुत्रेष्ट यज्ञ शुरू हुआ इधर यज्ञ आरंभ हुआ, ऋषि मुनि ने यज्ञ आरंभ कर दिया और उधर क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी के पास सारे देवता, अब देखो यहाँ से दृश्य बदल रहा है, इधर यज्ञ आरंभ हो गया अयोध्या में ऋषि के द्वारा और उधर देवताओं में भी बेचैनी बढ़ गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास इकट्ठे हो गए और जाकर के बोले कि ब्रह्मा जी आपके आशीर्वाद से रावण ने इतना अत्याचार कर दिया है कि हम देवताओं को कुछ वो समझता ही नहीं, हम लोग घर रहते भी हम लोग सब बेघर हो गए है ना, और हमारे बहुत कष्ट दे रहा है, तो आप कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी शंकर जी सब पृथ्वी माता भी गए करूप गाय का रूप धारण करके ये सब के सब जो है कहाँ गए भगवान के पास है ना। तो उसमें भगवान विष्णु के रूप में ये भगवान को जैसे याद कर रहे थे स्वयं भगवान गरुड़ पर सवार होकर के उनके देवताओं के सामने प्रकट हुए। तो बताया गया है कि एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा लेकर के भगवान विष्णु आए थे, लेकिन चौथे हाथ में क्या लेना चाहिए, पद्म लेना चाहिए, लेकिन पद्म लेकर के नहीं आए थे, यही तो रहस्य है। वो हाथ खुला लेके आए थे क्योंकि उसी हाथ से उनको अभय प्रदान करना था, किसको, देवताओं को। उन्होंने कहा कि आप लोग अब निर्भय हो जाइए क्योंकि रावण का जो अत्याचार बढ़ गया है और हम जो हैं इसमें यज्ञ चल रहा है और महाराजा दशरथ के घर हम चार भाई मैंने अपना विस्तार करके हम आएंगे और आप जितने भी ये देवता लोग हैं आप भी अपने अंश के रूप में वहाँ प्रकट होइए। तो ब्रह्मा जी के आदेश पे है ना विष्णु जी इतना कह करके अदृश्य हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला कि आप लोग भी जा करके अपना रूप, तो यही सब वानर भालू जो थे ये सभी देवी देवता लोग ही थे है ना, इन्होंने अपने अंश को अवतार, जैसे महाराजा इंद्र ने बाली के रूप में आए, बाली को उत्पन्न किया है ना, इंद्र के पुत्र थे कौन, बाली। सूर्य के पुत्र हुए सुग्रीव है ना, बृहस्पति के पुत्र हुए तार, पवन जी के पुत्र हुए हनुमान जी, उसे एकादश रुद्र जो शिव जी हैं वो हनुमान जी के रूप में आए प्रकट हुए। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी पर देवता लोग वानर भालू के रूप में आए और इधर जो है भगवान इधर पुत्रेष्ट यज्ञ चल रहा था। तो उसी समय जैसे ही हवन शुरू हुआ तो उस यज्ञ में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो दिव्य पुरुष प्रकट होकर के एक अपने सोने की बहुत बड़ी परात में खीर, बड़े एक पात्र में खीर लेकर के प्रकट हुआ है ना। महाराजा दशरथ को खीर क्या हुआ कि जो बर्तन था वो पकड़ा दिया। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, वो खीर लेकर के अपनी जो प्रधान रानी थी, तीन रानी, रानी तो बहुत थी लेकिन तीन रानी के जिसमें कौशल्या, तो जो खीर का आधा भाग उन्होंने किसको खिला दिया, कौशल्या को, आधा बच गया और आधे में फिर उन्होंने आधा किया है ना, और वो आधा भाग सुमित्रा जी के हाथ में पकड़ा दिया। जब सुमित्रा जी को पकड़ा दिया तो सुमित्रा जी ने उसको तत्काल खाया नहीं, उसको अपने हाथ में रख ही रहा और फिर जो आधा बचा हुआ था उसमें फिर आधा करके उन्होंने कैकेयी को खिला दिया, लेकिन कैकेयी ने तुरंत खा लिया और फिर थोड़ा सा बच गया था कि आधा थोड़ा फिर बचा था, क्योंकि तोड़ तोड़ के खिला रहे थे। जो बचा था तो महाराजा दशरथ ने कुछ सोच करके, है ना, क्योंकि एक हाथ में तो खीर लिया हुआ था सुमित्रा जी ने, भी खाया नहीं था, लेकिन दूसरे हाथ उनका खाया था, वो गए उनके दूसरे हाथ पकड़ा दिया। तो सुमित्रा ने क्या किया, वो दोनों खीर का दो भाग उनको मिल गया और दोनों भाग खाया, है ना, इसलिए उनके जो जुड़वे पुत्र पैदा हुए दो बार का। तो खीर खाने के बाद, है ना, ये तीनों रानियों ने जब खीर खाया तब जो है इनको आभास हुआ कि हमारे गर्भ में कोई आ गया है, अर्थात वो लोग गर्भवती थी। अब 12 महीने के बाद, है ना, भगवान जो है उनके यहाँ क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, जिसे अब 15 तारीख को आ रही रामनवमी, तब भगवान चैत्र मास में भगवान जो है प्रकट होते हैं दोपहर के समय, है ना। तो जब भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए तो बड़ा ही सुंदर क्या उपासना है, भय प्रकट की पाला देंगे। तो भगवान सबसे पहले भगवान राम प्रकट हुए, है ना, तो भाई राजा रामचंद्र की जोर से बोले, रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी,
लोचन अधिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी,
लोचन अधिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी,
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी,
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी,
कह तुई कर जोरी अस्तुत तोरी केवी करौ अनंता,
कौतुकारी जड़ी अस्तुतारी कही विदेही करो अंतना,
माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता,
माया गुण जाना
तीत अमाना वेद पुराण भना, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुत संता,
करुणा सुख सागर सब गुण जय गावै सुत संता,
ओ मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री संता,
सो मम हित लागी जनय अनुरागी भय प्रकट सीकांता,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे,
ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद
कहे, सोपासी यह उपहासी सुनत धीर मत
किरण रहे मम दिवस वही उपहारी सुनत मत स्थिर न रहे
उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत
उपजा जब प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की
कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम
कही कथा सुनाई मारु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम
माता पुनि बोली सोमति डोली
माता बुनी बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा
जय सुशीला अति प्रिय सीला यशुक परम अनुपा
जय शिशु लीला अति प्रिय लीला यशुक परम अनुपा
सुनत चन सुजाना रोतन थाना बालक सुरभूता
सुनि वचन रोशन थाना होई बालक सुरभूता
यह चरित जगावे हरि पद पावे तुम पर भवकूपा
यह चरित जे गावे हरि पद तन पर
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
राजा रामचंद्र की देखे जब भगवान प्रकट हुए तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए महाराजा दशरथ जब उनको पता चला कि हमारे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने जिसमें उनके पास जो था वहीं लुटाना शुरू कर दिया जितने आभूषण पड़े सब प्रसन्न होकर के पाना से बहुत प्रसन्न हुए महाराज दशरथ कि 60,000 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद दशमी के दिन फिर दूसरे दिन फिर प्रकट हुए कौन लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी यानी वो प्रकट हुए फिर भरत जी भी प्रकट हुए इस तरह से 4 पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई उनके पास तो पूरा अयोध्या में इतना आनंद हो गया कि जो जहाँ था वहीं पे कीर्तन भजन करने लगा है ना सब गुणगान सब एक दूसरे की मिठाई बांट रहे हैं सब गले लगा रहे हैं अब पूरा वातावरण पवित्र हो गया सब प्रसन्न हो गए वहाँ पे पूरे अयोध्या में खुशी का कोई ठिकाना रहे यहाँ तक कि जो भी था सब दान करने लगे भगवान तो भगवान जब प्रकट हुए कौशल्या के सामने है ना तो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए है ना क्यों क्योंकि जब यही अदिति और कश्यप ने तपस्या की थी तो उसे भगवान विष्णु के रूप प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ तो भगवान ने कहा कि मुझ जैसा पुत्र तो हो नहीं सकता मुझे ही खुद आना पड़ेगा इसीलिए भगवान कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो ही कौशल्या जी कहती हैं प्रार्थना में कि आप तजहु तात यह रूपा कि हे प्रभु आप अपना यह रूप त्यागिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक आप मुझे बालक के रूप में आइए है ना और तब हम आपको पुत्र के रूप में आनंद है ना कीजिए सुशीला आप जो बच्चों की लीलाएं होती है वो कुछ करें मैं चाहता हूँ मैं चतुर्भुज नहीं चाहती हूँ ये प्रार्थना किया तब भगवान क्या किए, द्विज रूप में प्रकट हुए। यही कृष्ण भी ऐसे किया, जब वसुदेव देव के सामने भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव देव की जब प्रार्थना की तब भगवान ने क्या किया, बालक रूप में है। तो भगवान की ये महानता है क्योंकि अपना चतुर्भुज रूप इसे दिखाया ताकि माँ कौशल्या मैया को बिल्कुल कन्फर्म हो जाए, विश्वास हो जाए कि ये हमारे वही विष्णु ही है, है ना, किसी प्रकार का शंका न हो, है ना। तो इसलिए आनंद जो है अभी तीनों माताएं आनंद लेने लगी। उसके बाद इनका नामकरण संस्कार हुआ, है ना, राम लक्ष्मण भरतसंहन का नामकरण हुआ, तो बहुत विस्तार में है। फिर जब ये लोग थोड़ा सा बड़े बचपन की जो लीलाएं हैं, कुछ लीलाएं हम आपको सुनाना चाहते हैं कि भगवान की एक लीला बहुत ही प्रसिद्ध लीला है, है ना, कि भगवान जब नन्हे चारों भाई छोटे थे तो एक बार कौशल्या जी ने क्या किया कि भगवान को श्रृंगार करके और पालने में उनको क्या किया, सुला दिया। और क्योंकि पालना जो होता है उसमें सुला करके उसको हिलाते हैं तो नींद अच्छी लगती है, तो कौशल्या जी ने क्या किया, उनको पालने में सुला करके और दूसरे किचन में जा करके दूसरे काम में लग गई। और वहाँ पे जो नैवेद्य का भोग लगाया गया था अपने घर में ठाकुर जी के, कि उनके इष्ट देवता रंगनाथ जी हैं तो उनको भोग लगा हुआ था, तो वो करके दूसरे काम में लग गई। तो जैसे ही कौशल्या जाती हैं किचन, देखती हैं कि जो भगवान राम हैं जो बालक के रूप में, वहाँ का जो नैवेद्य चढ़ाया हुआ है उनके देवता को, उनको खा रहे हैं, तो दौड़ करके वो पालने के पास जाती हैं। वहाँ पे जाके देखती हैं कि वहाँ तो सो रहे हैं, क्योंकि वो तो सुला के गई थी। फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर दौड़ करके वहाँ जाती हैं तो वही राम वहाँ पे क्या है, खा रहे हैं। फिर दौड़ कर आती तो वहाँ सो रहे हैं, तो यहाँ वहाँ दुई बालक दिखा, तो कौशल्या जी भ्रमित हो गई कि यहाँ भी वही बालक दिखाई दे रहा है, वहाँ भी बालक दे रहा है। तो बचपन से ही भगवान की लीलाएं क्या होंगी, दिव्य शुरू कर दिया। यही भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि हमारा जो कर्म होता है जन्म तो दिव्य होता है। तो ये लीलाएं भगवान बचपन से ही दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, बड़ी सुंदर लीला है राम की बचपन की, कि चार भाई थे तो चारों भाई के लिए अलग अलग पालने बनाए गए थे, सोने के पालना, है ना, और उसमें उन चारों भाई के अलग अलग, जैसे यहाँ पे राम का पालना था तो राम लेटे हुए थे, एक दूसरे पालने में भरत जी थे, तीसरे में लक्ष्मण जी थे, चौथे में शत्रुघ्न जी थे। इसी क्रम में वो लोग अलग अलग पालने में क्या रहते लेटे हुए थे। अचानक क्या हुआ कि चारों भाई रोने लगे और इतने जोर से चारों भाई एक साथ रोने लगे। अब चार पुत्र एक साथ रोना शुरू किया तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने में ये जो रानियां थी दौड़ करके आई, है ना, और सब तीनों रानियां अपने अपने बच्चों को मनाने का प्रयास किया। कौशल्या जी राम को पुचकाने लगी, रोना बंद करो, है ना, कई कई भरत को पुचकार रहे हैं रोना बंद करो, और सुमित्रा जी दो दो को संभाल रही हैं, है ना, कि रोना बंद करो। लेकिन ये चारों बालक जो हैं चुप हो ही नहीं रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, है ना। तब जो है कि इनका रोना कैसे बंद होगा, तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी बहुत बड़े विद्वान थे, दूरदृष्टि थी, है ना, उन्होंने तुरंत देखा, वो समझ गए क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने रानियों से कहा कि ऐसा करो कि जो लक्ष्मण का जो पलना है वो राम के पलने के पास ला दो, है ना, और शत्रुघ्न का जो पलना है वो भरत के पलने के साथ कर दो, अब तब देखिए क्या होता है। तो रानियों ने ऐसा किया, तो जैसे ही राम का पलना और लक्ष्मण का पलना पास पास हो गया, दोनों भाई एकदम करीब आ गए, अब भरत और शत्रुघ्न कपिलनाथ दोनों के करीब हो गया, तभी लोग रोना बंद कर दिए। रोना तो बंद हो गया लेकिन क्रंदन कर रहे थे, फिर भी हाथ पर चबड़ रहे थे। अर्थात इतने में भी ये चारों बालक बेचैन थे। थे वशिष्ठ जी ने सोचा कि लगता है कि अभी अभी तो कुछ हुआ है, लेकिन अब वो समझ गए वशिष्ठ जी क्या चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, रानी से कहा कि अब क्या काम करिए, लक्ष्मण जी को उठाइए और राम के साथ लिटा दीजिए। अब एक अभी एक पलना था, एक पलने में अकेले थे, अब लक्ष्मण को भी थोड़ा उनको खिसका कर सरका करके और एडजस्ट किया गया दोनों को। जब दोनों भाइयों के एक पलने में कर दिया राम लक्ष्मण को, अब भरत शनकुन को एक साथ कर दिया, तो दोनों हंसने रोने बंद हो, कंदर रोदन करना सब बंद हो गया, सब आनंद होने लगे। तो शुरू से ही एक दूसरे के प्रति जो है अनुराग उत्पन्न हो गया। राम के प्रति लक्ष्मण का अनुराग उत्पन्न हुआ, और शत्रुघ्न किसके साथ हुए, भरत के साथ। बचपन से ही इनकी ऐसी लीला थी, इस लीला से पता चलता है। एक बार क्या हुआ, जब ये लोग और बड़े हुए, लगभग 5 साल के हो गए, तो एक दिन ये लोग, क्योंकि महाराजा दशरथ का जो अयोध्यापुरी थे बहुत ही खूबसूरत, अयोध्यापुरी का जो वर्णन किया गया इतना सुंदर वर्णन किया गया कि अप्सराएं आती थी, है ना, वहाँ से जो बड़े बड़े राजमार्ग होते थे वहाँ पे पुष्प बिछाती थी और सुगंधित जल का छिड़काव हाथियों से किया जाता था, है ना। और राजमार्ग के चारों तरफ जो के दोनों साइड में सुंदर महल बनाए गए थे कई मंजिल के, और हर महल के साथ साथ बगीचा लगाया गया था ताकि अगर कोई आदमी आए जाए वहाँ पे तो उसको भूखा न रहे, छाया मिलती रहे, फल फूल खाता रहे। तो बहुत ही सुंदर अयोध्या का वर्णन किया, तो उसमें कई अच्छे अच्छे गार्डन और बगीचा होते थे, तालाब होते थे। तो साथ में एक छोटा सा कुंड था जिसमें कीचड़ होता है, कीचड़। तो एक चारों बालक को पता नहीं क्या सोचा, वो दौड़ के कीचड़ में खेलने लगे। तो उसमें क्या करते थे, कीचड़ का मिट्टी का गोला बनाते थे, है ना, और हर भाई एक दूसरे भाई पर वो मिट्टी का गोला जो है फेंकते थे, और तीनों रानियां इसका आनंद उठा रही दौड़ करके। तो ये जो मंथरा थी ना, कुबड़ी मंथरा, है ना, वो कैकेयी के साथ ही आई थी, जब उनकी शादी हुई थी तो कैकेयी की, तो वो उनके साथ ही आई थी मायके से वहाँ पर। तो वो दौड़ के आए, तो भगवान राम को पता नहीं क्या सुझाव, कुबड़ी को देख करके, मंथरा को देख करके, उन्होंने एक मिट्टी का कीचड़ का गोला लिया और अपने धनुष के नोक पे उसको ऐसे फंसा करके और उसके कुबड़ी पर मार दिया, है ना, और पूरा वो कीचड़ वह हो गई पूरा। और वो कभी भी वो शुरू से मथुरा राम को पसंद नहीं करती थी, है ना। तो भगवान ने बड़े उपहास का किया, और इसका वो कहता कि हम मैं बदला लूँगी, वो हमेशा अपमानित झेलती थी। तो इस तरह से बचपन के लिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने आचरण से हमको शिक्षा दिया। भगवान सुबह उठ करके अपने माता पिता को क्या करते थे, प्रणाम करते थे। तो भगवान राम स्वयं भगवान हैं जो पूरे यूनिवर्स के पालन करता है, वे जो है सोड करके सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। ये हमारा संस्कार है, सिस्टम जान लीजिए कि जब भी हम सुबह उठें तो सबसे पहले हमें किसका प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी माता का। किसका करना चाहिए, कुछ 7 माताएं हैं, उनमें से एक माता क्या है, पृथ्वी माता है। क्योंकि हमारा जो पहला चरण पड़ता है किस पर पड़ता है, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी माता के ऊपर अपना पांव रखने से पहले हमें उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये संस्कार बताया गया। तो भगवान उठ करके प्रणाम करते थे और फिर अपने माता पिता महाराज दशरथ और कौशल्या का क्या करते, चरण छूते थे। तो ये प्रभु भगवान ने खुद शिक्षा दी। हम सब का भी परम कर्तव्य होता है कि आजकल जीवन बहुत बदल गया है लोगों का, ऐसा जीवन बदल गया है कि लोग अपने माता पिता को घर में रखना ही नहीं चाहते। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। जैसे ही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बेटे लोग क्या करते हैं, उनके अलग से अनाथालय ढूंढना लगते हैं। ये चाहते हैं कि इनको अलग से फ्लैट ले लिया जाए, वहाँ पड़े रहें, हम अपना एंजॉय करें, राइट। तो प्रणाम कहाँ से करेंगे जब रखेंगे नहीं साथ में, तो प्रणाम कहाँ करेंगे। लेकिन नहीं, हमने जो हमारे माता पिता हैं इस दुनिया में लाने वाले कौन होते हैं, इंसान को कौन होते हैं, माता पिता ही होते हैं। कि माता पिता से ही संतान की उत्पत्ति होती है। इस दुनिया में संतान को कौन लाता है, माता और पिता लेके आता। जो माता पिता के माध्यम से इस संसार में हम आते हैं, है ना, अब बड़े होकर के उन्हीं माता पिता को हम क्या करें, अपमान करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इसीलिए भगवान श्री राम क्या करते थे, सोर करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। तो आप सब से भी यही अनुरोध है कि आप लोग यही काम करिए, अपने घर में अपने माता पिता को रखिए, है ना, रखना चाहिए, है ना, और सुबह उठ करके उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा, देखो माता पिता कितने भी हों लेकिन अगर सुबह उठ करके अगर आप उनका चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो उनका भी दिल क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना, आपको आशीर्वाद देंगे। कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहता है, ये आप जान लीजिए, ये प्रैक्टिकल करके देखिए। तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये हमें शिक्षा देती हैं, है ना। तो भगवान राम की शिक्षा हमें ग्रहण करना चाहिए कि भाई भाई के साथ कैसे प्रेम होना चाहिए, आगे आप सुनेंगे। और किस तरह से भगवान अपने माता पिता कौशल्या और इनको महाराज दशरथ को आनंद देते थे। तो सुबह उठ करके भगवान प्रणाम करते थे, सबको आदर देते थे, है ना। जितने भी वशिष्ठ जी जो भी उनसे मिलता था, भगवान सबको सम्मान देते थे। तो हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता हैं, है ना, दादा ताऊ हैं, हमें सबको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और सुबह उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इस सिस्टम, इस शिष्टाचार हमारे जीवन में आना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है, इसलिए हर इंसान परेशान है, है ना। हमें माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान राम से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान इस तरह से एक बाल लीलाएं करते थे। कभी कभी उनको श्रृंगार कर दिया जाता था। कौशल्या जी भगवान राम को जो है श्रृंगार उनका पायल वगैरह पहना कर चलती थी, और जब बुलाती थी वो ठुमक करके भाग चलते थे, है ना। तो बहुत ही सुंदर बताया गया कि जब कौशल्या माता जी उनको बुलाती थी वो ठुमक ठुमक करके भाग जाते थे, है ना। इसीलिए एक गीत भी गाया गया कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो इस तरह से ये जो दिव्य बचपन की लीलाएं भगवान दिखा रहे थे, और ये आनंद कौशल्या जी को मिल रहा था, सुमित्रा जी को मिल रहा था, है ना, कैकेयी को मिल रहा था, ये सब आनंद बचपन की लीला का पूरा आनंद उठा रहे हैं। और उसके बाद ये लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तब एक दिन महाराज दशरथ जब देखे कि हमारे बालक अब बड़े हो रहे हैं, तो सोच रहे थे इनके विवाह के लायक हो रहे हैं, चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी जैसे ही आए तो बड़ा भव्य स्वागत किया महाराज दशरथ ने उनका, है ना, और उनका चरण धोए और सोने के सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बैठाया, और उन्होंने इस तरह से उनका स्वागत किया कि जैसे कृषि वर्ण खेती सूख रही हो और बारिश हो जाए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके आने से उनको इस तरह से अनुभव हो रहा था, है ना, कि जैसे जमीन सूख रही हो और पानी आ गया हो, उनको तृप्त हो गए। तो बड़ा स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद फिर महाराज दशरथ पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप कैसे पधारे, कोई उद्देश्य तो होगा, है ना। तो महाराज, तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज दशरथ, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए आपके दोनों पुत्र चाहता हूँ। कितने दिन के लिए? मात्र 10 दिन के लिए आपके दो पुत्र हम चाहे, राम और लक्ष्मण को मैं 10 दिन के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ तो कुछ भयानक जो राक्षस हैं वो बाधा डालते हैं। तुम्हारे दर्शन क्योंकि वो राक्षस कौन से हैं, तब उन्होंने बताया कि रावण के भेजे गए दूत हैं, है ना, राक्षस हैं जो राजा रावण से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना, वो लोग हमको परेशान करते हैं। तो रावण का नाम सुनते ही, है ना, महाराज दशरथ को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमारे बालक अभी तो बहुत छोटे हैं, है ना, और रावण इतना बलवान है कि मैं खुद युद्ध नहीं कर सकता उसके साथ, है ना, तो मैं अपने बच्चों को कैसे भेज सकता हूँ। कि महाराज दशरथ के मालूम नहीं था कि उनके दोनों बच्चे अलौकिक हैं, दिव्य हैं, स्वयं भगवान हैं। ये किसको मालूम था? विश्वामित्र जानते थे कि भगवान राम और लक्ष्मण ये साधारण पुत्र नहीं है, है ना, वो जानते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, आप महाराज दशरथ, आपको अगर इनको देंगे तो हम इनको दिव्यास्त्र भी देंगे और कुछ मंत्र इनको हम देंगे, इनकी शक्ति बढ़ाएंगे, इनकी गौरव गाथा हम करेंगे। तो नहीं मान रहे थे, वो तो रोने लगे, युधिष्ठिर क्या नाम है महाराज दशरथ, वो तो रोने लगे, क्योंकि हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, हमारे मैं तो रावण जैसे अत्याचारी किसान, हमारे दो बच्चे कैसे करेंगे। तब जब देखे कि विश्वामित्र अब राजा दशरथ मान नहीं रहे हैं, तब वो थोड़ा गुस्से में आ गए विश्वामित्र। उन्होंने डांटा कि जैसे उन डांट रहे थे उसी समय वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने माहौल को संभाल लिया, उन्होंने कहा कि देखिए, विश्वामित्र चाहते तो उन राक्षसों का वध कर सकते थे श्राप दे करके, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपके पुत्रों का ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनकी ख्याति हो, उनके माध्यम से काम कराना चाहते हैं, है ना। जो जो वो समझ रहे हैं राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, आप नहीं समझ रहे हैं, आप तो पुत्र में फंसे हुए हैं, लेकिन विश्वामित्र जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि भगवान राम और लक्ष्मण क्या है, है ना। जब उन्होंने समझा कि वशिष्ठ की बात तब महाराज दशरथ कभी नहीं टालते थे, क्योंकि बहुत उत्तम सलाहकार थे, उनके शुभ चिंतक, के शुभ चिंतक उसे कहा जाता है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। तो महाराज दशरथ को मालूम था कि वशिष्ठ जी जो बात करेंगे वो निश्चित रूप से हमारे हित की बात करेंगे। तब वशिष्ठ जी की बात मान करके उन्होंने राम और लक्ष्मण को दे दिया। राम और लक्ष्मण को लेकर के जब चले, है ना, तो सबसे पहले उन्होंने अतिबला नाम का मंत्र उनको विद्या दी। बला अतिबला, बला अतिबला एक ऐसी विद्या होती है कि जिस विद्या को की जानकारी होने के बाद फिर उसको थकावट नहीं लगती। आप जितना भी पैदल चले, कोई भी काम करें, आप थकान महसूस नहीं करेंगे, आलस रहित हो जाएंगे, और सच बढ़ती है कि आपको भूख भी नहीं सताएगी। और विश्वामित्र को मालूम था कि भगवान राम किस लिए आए हैं, इनको कितना बड़ा काम करना है, क्या करना है, उनको सब मालूम था, इसलिए उनको पता था। तो उन्होंने बला और अतिबला नाम की विद्या भगवान राम को सिखाया दिया, और उससे वो लोग बलवान हुए। जब कुछ दूर जाने लगे तो एक बहुत ही भयानक वन दिखाई दिया। उस वन के बारे में विश्वामित्र ने कहा कि देखिए, ये वन बड़ा भयानक है, और यहाँ पे ताड़का नाम की जो राक्षसी है उसका उपद्रव आतंक यहाँ फैला होता है, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ से सब भाग गए हैं कि उसके अत्याचार से कोई यहाँ यज्ञ अनुष्ठान कोई नहीं कर पा रहा है। तो हे राम, उस ताड़का का वध करना आवश्यक है। तो ताड़का के बारे में भगवान राम ने पूछा कि ताड़का के इतिहास का ताड़का है कौन। तब विश्वामित्री उसके बारे में बताते हैं कि सुकेतु नाम के एक यक्ष थे, यक्ष है ना, वो बहुत बड़े तपस्वी थे, है ना, उनको कोई संतान नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यज्ञ अनुष्ठान किया कि संतान प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हो गए, लेकिन पुत्र न दे करके एक पुत्र दे दिया, पुत्री दिया, है ना, और पुत्री का नाम रखा ताड़का। और लेकिन ये जो ताड़का थी बहुत सुंदर थी, है ना, और 1000 हाथी का बल था, बहुत बलवान पुत्री हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जाम के जो पुत्र थे सुंद, उनके साथ यक्ष उनके साथ सुंद के साथ शादी कर दी। लेकिन सुंद ने क्या किया कि एक दिन अगस्त ऋषि के आश्रम जा करके उनका अपमान कर दिया, और उसके अपमान से अगस्त मुनि ने क्या किया, श्राप दे करके सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। तो ये जो ताड़का थी, है ना, ये जो ताड़का थी ये क्या बन गई, इस बदला लेने के लिए ताड़का, इसके दो पुत्र मारीच और सुबाहु, ये ताड़का के पुत्र थे। कि ये जो मारीच और ताड़का इस दोनों गए अगस्त ऋषि को बदला लेने के लिए। तो अगस्त ऋषि ने क्या किया, पहले तो सुंद को भस्म कर दिया था, और ताड़का और मारीच इनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों क्या हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो जबकि यक्ष थे ये लोग राक्षस बन गए। लेकिन इनका जो आतंक है हे राम बहुत भयानक है, और आप जरा सा भी संकोच नहीं करना मारने के लिए। इतना बता ही रहे थे कि ताड़का जो है उसके मनुष्यों की महक मिल जाती थी, वो समझ गए कि कोई आ रहा है हमारे क्षेत्र में, वो आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई दी। विश्वामित्र डर के, देखो वही ताड़का है, आप इसको ज़्यादा देर तक मत रुकना, इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। भगवान राम ने देखा लक्ष्मण ने, तो भगवान ने सोचा, भगवान में थोड़ा दुविधा फंस गए कि स्त्री है, इसको मारें कि न मारें, है नहीं कि पहली बार अगर किसी को मारने का नंबर आया तो स्त्री थी, है ना। तो विश्वामित्र ने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो दुष्ट है, और दुष्ट को हमको मारना ही चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। भगवान कृष्ण ने भी पहले किसको मारा था, स्त्री को मारा था, वो कौन थी, पूतना थी, है ना। और यहाँ भी राम अवतार में भी उनको पहली अगर किसी को मुलाकात हुई है वो भी स्त्री है, लेकिन ताड़का के रूप में है ना। तो उन्हें समझाया विश्वामित्र के कहने पर, क्योंकि विश्वामित्र उनके पिताजी ने बोला था हमारे दशरथ कि विश्वामित्र जैसा कहेंगे बेटा तुम्हें वही करना है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अब विश्वामित्र जब कह दिया कि इसको मारना है तो मारना है, है ना। तब भगवान ने क्या किया, एक बाण से उसका हाथ जो है काट दिया। वो इतना गुस्सा में हो गई भयानक करके कि पूरा आंधी तूफान मायावी से अंदर फैला दिया, आंधी तूफान आने लगा। उसके बाद धूल की वर्षा शुरू कर दी पूरा मायावी, क्योंकि लड़ने में बड़ी मास्टर थी, उसका मायावी चाल से किया धूल वर्षा कर। फिर भगवान से ने फिर एक बाण मारा, तो उसने और क्रोध किया, है ना, क्योंकि भगवान उसको अभी मार नहीं रहे हैं, अभी तो उसका अंग को खंडन कर रहे हैं। इतने में उससे पत्थर की वर्षा, खून की वर्षा, जितना भी उसकी मायावी चाल थी वो सब पूरा झोंक दिया भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। तो विश्वामित्र डर गए, विश्वामित्र ने कहा कि जैसे ही संध्या होगा इसकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर मारी नहीं जाएगी, इसलिए राम अब आप ज़्यादा देर मत करिए, इसको तत्काल रस्सी को बंद कर दीजिए। तब भगवान राम ने एक बाण निकाला और छींच करके उसके छाती पे मारा और ताड़का वहीं पे मर गई। जैसे ही ताड़का मर गई सारे देवता क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, बोलो तो पुष्प लेकर तैयारी थे पुष्प वर्षा, क्योंकि ताड़का ने सबको परेशान करा था। और सब भगवान के क्या करने लगे, गुणगान करने लगे, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोले
जय सिया राम,
जय रघुनंदन 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 जय सिया राम,
जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी नंदन तुम्हें प्रणाम,
जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
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 जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम।
इस पृथ्वी पर भगवान आए इसी के लिए हैं, भगवान श्री राम आए इसी के लिए कि जितने भी संतों को भक्तों को कष्ट देने वाले राक्षस हैं भगवान ने एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र फिर अपने आश्रम में जाते हैं जहाँ वे खुद रहते थे, वहाँ पे गए जहाँ पे उनका आश्रम था। विश्वामित्र जब अपने आश्रम में गए तो 6 दिन का उनका यज्ञ अनुष्ठान था, बहुत बढ़िया भव्य यज्ञ का निर्माण किया। और उसके बाद विश्वामित्र जी यज्ञ के लिए बैठे और दोनों भाई राम और लक्ष्मण रात और दिन जाग करके, क्योंकि ये जो यज्ञ था अननिष्ठाप यज्ञ था, दिन रात 6 दिन दिन रात जो है ये यज्ञ चल रहा था। तो 6 दिन और जब 6वीं रात आई, अंतिम जब 6वीं रात आने की हुआ और यज्ञ चल रहा था, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और दोनों भाई धनुष बाण लेकर के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए कोई बाधा डालने कोई राक्षस न आ जाए है ना, इसमें लगे हुए थे। तो दृश्य इस प्रकार से है कि वो यज्ञ कर रहे हैं और राम और लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा करके चारों तरफ चौकन्ना देख करके और यज्ञ के चारों तरफ घूम रहे टहल रहे देख रहे। और उसी समय जब आहुति संपन्न होने का समय आ गया, उसके पहले यज्ञ कुंड का समापन हो उसके पहले ही तो भयानक राक्षस कौन थे, मारीच और सुबाहु आकाश मार्ग से आए और उन्होंने यज्ञ जो था वहाँ पे हड्डी मांस खून ये सब फेंकना शुरू कर दिया। इतने में जब भगवान ने देखा तो भगवान ने देर नहीं लगाए, एक बाण से उन्होंने क्या किया, मारीच को मारा, ऐसा बाण मारा कि वो बाण उसको जाकर के 80 मील लगभग 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया, किसको? मारीस को। मारीस को भगवान ने मारा नहीं। चाहते क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान को मालूम था। देखो भगवान राम जो है ना, ये त्रिकालज्ञ हैं। भगवान का एक नाम क्या है? त्रिकालज्ञ, जो तीनों काल को जानते हैं, वर्तमान और भविष्य और बीता हुआ, तीनों जानते हैं। भगवान को मालूम था कि मारीच आगे की लीला में इसका सहयोग रहेगा, है ना, इसको हम नहीं मारेंगे, इसीलिए भगवान उसको छोड़ दिया उसका। लेकिन जो सुबाहु था उसको भगवान ने तत्काल क्या कर दिया? मार दिया। जब मारीच वहाँ पे गया तो समुद्र में, तो वहीं पे उसकी मुलाकात जानते किससे हुई? सुमाली के साथ, जो रावण का नाना था, है ना, रावण का नाना था, है ना, ये सुमाली। सुमाली, सुमाली ने मारीच को अपने घर में रखा। मारीच से कहा, क्योंकि वो मारीच को जानता था कि मारीच बहुत कलाकार है, ये भेष बदलना इसको बहुत आता है, है ना, जिस चीज का चाहता थे वही रूप धारण कर लेता है, है ना। तो उसने कहा, इसीलिए उसको अपने पुत्र जैसा व्यवहार करने लगा माता। इसीलिए वो जो है रावण उसको मारीच को क्या बोलता था? मामा बोलता था, है ना, कि सुमारी तनाना हुआ तो उसको मामा बोलता था। सगा मामा नहीं था, लेकिन चूंकि उनके घर में रहता था इसलिए माँ का। तो सुमाली जो है मारीच, तो मारीच को भी एक जगह दी गई थे उधर। तो जब मारीच और सुबाहु, हाँ, जब मारे गए, तब भगवान ने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात उस समय महाराजा जनक, महाराजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी। हुआ क्या कि महाराज जनक के यहाँ, महाराज जनक जब राजा थे तो उनके भी राज में एक बार सूखा पड़ा, है ना। तो वो जो है महाराज जनक और सुनैना, ये हल जोत रहे थे ताकि बारिश हो, बस उतार करके हल जोत रहे थे। तो जब वो हल जुताई कर रहे थे उसी समय एक संदूक बक्सा मिला जिसमें सीता जी थी, है ना, इसीलिए उनका नाम सीता, जो सीत में फंस गई थी। तो सीता, तो सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी, है ना, पृथ्वी में मिली थी, हल जोतते समय उनको मिली थी महाराज जनक। लेकिन सीता जी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी तेजी से वो जवान होते चली गए कि महाराज जनक को अपनी बेटी की शादी की चिंता थी। तो उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की थी, क्योंकि महाराज जनक के घर शंकर जी की बहुत ही उत्तम और बहुत ही वजनदार और खास एक विशेष धनुष थी, रखी थी। तो एक बार सीता जी क्या कर रही थी, जब घर की सफाई करते, लेपन करते, कुछ काम करती, अपने बाएं हाथ से ही वो धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया था। महाराज जनक देखकर के बड़े दंग रह गए, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि बाएं हाथ से उठा करके धनुष के उठा नहीं सकता था। तो समझ गए कि हमारी बिटिया भी कुछ चमत्कारिक है, है ना। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करेंगे जो सबसे वीर राजा हो पृथ्वी का, ऐसा राजा कि वो धनुष को उठा भी ले और उससे प्रत्यंता चढ़ा सकने की क्षमता रखता हो, है ना। ऐसी उन्होंने एक प्रतिज्ञा की और इस स्वयंवर का उन्होंने पूरे दुनिया में न्यूज़ फैल गई, है ना। तो महाराज जनक का ये जो है स्वयंवर की सूचना विश्वामित्र को भी थी, है ना। इसीलिए विश्वामित्र कहें कि अब हम लोग कहाँ चलेंगे? मिथिला चलेंगे, है ना। महाराज जनक के यहाँ के वहाँ पर स्वयंवर उन्होंने रचा हुआ है, तो हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, है ना। तो भगवान राम और लक्ष्मण को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई जब स्वयंवर हो रहा है तो हम लोगों को चलना चाहिए, है ना। तो जब जा ही रहे थे तो रास्ते में, क्योंकि दूरी तो थी ही, तो रास्ते में उनको फिर एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण माने एक ऐसी कुटिया आश्रम दिखाई दिया जिसको देख लगता था कि एक समय में एक कुटिया बहुत ही दिव्य और बढ़िया आश्रम रहा होगा, लेकिन इसमें एक खंडहर जैसा हो गया है। तब भगवान राम ने पूछा कि इस स्थान के बारे में कि एक ऐसा स्थान है, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, ये जो कुटिया आप देख रहे हैं, एक गौतम ऋषि जो है ये उनका आश्रम है। तो गौतम ऋषि तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, है ना, बहुत प्रसिद्ध ऋषि गौतम ऋषि, है ना। तो उनकी एक नारी थी अहिल्या, है ना, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। जब उन्होंने अहिल्या का गौतम ऋषि की बात की तो भगवान राम की जिज्ञासा हुई, वो जानना चाहते थे कि इसकी कथा क्या है। तो जानते हैं कि जो अहिल्या थी ये किसकी पुत्री थी, पता है आप लोगों को? अहिल्या ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने बहुत ही अपनी कल्पना से एक ऐसी स्त्री की रचना की जिसके शास्त्र में वर्णन किया गया है कि एक एक अंग को चुन चुन करके श्रृंगार किया। इसीलिए जब वो पूरी स्त्री तैयार हुई, अर्थात जब अहिल्या जी की रचना की ब्रह्मा जी ने, तो इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर कि जितने भी देवता थे, है ना, उनकी सुंदरता को अहिल्या को देख करके कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो इतना चाहे कि मैं इससे शादी करूँ। और उसमें सबसे ज्यादा देवताओं का जो देवता था श्रेष्ठ, क्या नाम उसका? इंद्र, है ना। और उसने जब देखा तो किसी न किसी भी हालत में वो शादी करना चाहता था, है ना। तो इतने कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे, पता नहीं था ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कह कि इसके लिए भी हम एक स्वयंवर जैसा एक सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी कहा कि ऐसे हम शादी नहीं करेंगे किसी के साथ, एक हम कंडीशन रखेंगे कि जो देवता, जो भी व्यक्ति, चाहे मनुष्य हो, देवता कोई भी, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके मेरे पास आ जाएगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री की शादी कर देंगे। जब एक घोषणा करते थे, जितने भी देवता थे सबके अपनी अपनी सवारी होती है, है ना। अब सारे देवता, इंद्र भी अपने ऐरावत थाते पर बैठ करके, जिसके पास जिनकी जो सवारी थी, अब बैठ करके और दौड़ में भाग ले लिए कि जितनी जल्दी हो सके। और उसकी सुंदरता से ला लेते कि सब शादी करना चाहते थे, लेकिन कंडीशन इतनी थी कि जो सबसे पहले पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड का परिक्रमा करके सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास आएगा, उसके साथ शादी कर देंगे। ऐसा हुआ। तो जब ये रेस शुरू हुई तो गौतम ऋषि भी प्रभावित थे। गौतम ऋषि भी बड़े प्रभावित थे, लेकिन गौतम ऋषि एक ऋषि थे, बड़े विद्वान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, और उनकी जो सार बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने एक युक्ति निकाली। इंडिया का जुगाड़ बहुत फेमस है, जुगाड़ फेमस है, नहीं फेमस। उन्होंने एक युक्ति निकाली, उनका दिमाग बहुत तेज था, बहुत फास्ट था। उन्होंने क्या कहा कि अच्छा, सब लोग दौड़ में भाग लिए हैं, उन्होंने क्या किया, गौ माता होती ना, गौ माता, उन्होंने एक गौ माता को अपने पास रखा, लाया, और उन्होंने तुरंत गौ माता की क्या की, परिक्रमा कर ली। जानते हैं कि गौ माता पूरे ब्रह्मांड की प्रतिनिधित्व करती हैं। एक गौ माता कोई साधारण माता नहीं है, ये आप जान लीजिए कि गौ माता का भी लोक होता है, जिसे गोलोक कहते हैं। अब गोलोक की क्वीन कौन है? सुरभि माता जी, सुरभि गौ माता जी, है ना। अब भगवान कृष्ण जो है पृथ्वी पर जब आते हैं तो कहते गौ ब्राह्मण हिताच है, मैं ब्राह्मण की सुरक्षा करने के लिए और गौ की सुरक्षा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा, है ना। अब गोविंद नाम किसने दिया था? सुरभि गौ माता ने दिया, सुरभि गाय ने दिया था, भगवान का नामकरण सुरभि ने दिया था कि आज से आपका नाम गोविंद पड़ेगा। तो ऐसी गाय की उन्होंने परिक्रमा, आप सबको पता है कि जो गौ माता है उनमें जितने भी देवता होते हैं सबका क्या होता है? सबका वास होता है। तो पूरे ब्रह्मांड को जो प्रण करती गौ माता, उन्होंने तुरंत गौतम ऋषि ने क्या किया, गौ जी की, गौ माता की परिक्रमा करके अब ब्रह्मा जी के सामने आके खड़े हो गए। और जबकि बेचारे इंद्रलोक हाथी पर दौड़ी लगा रहे हैं, अभी सारे देवता दौड़ी लगा रहे हैं और गौतम ऋषि गौ माता की परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ब्रह्मा जी, तो भाई ब्रह्मा जी आज जीव प्रजापिता है ना, उनके बुद्धि से बहुत समझ गए कि गौतम ऋषि कितने बुद्धिमान हैं है। और उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि गौ माता पूरे ब्रह्मांड की जो है प्रतीक हैं और 33 करोड़ देवता इनके वास करते हैं, इनसे ज्यादा इनकी परिक्रमा कर लिया तो सबकी परिक्रमा हो गई है ना। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अहिल्या को बुलाया और अहिल्या की शादी किसके साथ कर दी? गौतम ऋषि के साथ शादी कर दी। अब गौतम ऋषि और अहिल्या, अहिल्या को लेकर के गौतम ऋषि कहाँ गए? अपने आश्रम में, बहुत ही भव्य और रमणीक आश्रम, चारों तरफ बाहर ही बाहर, बहुत सुंदर वातावरण। तो अहिल्या और गौतम ऋषि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जानते हैं उस पुत्र का नाम कौन बताएगा? शतानंद। शतानंद किसके पुत्र थे? गौतम ऋषि के। और किसके मंत्री थे? महाराजा जनक के। महाराजा जनक के यहाँ शतानंद तब जनक बुलाए, जब भी किसी को बुलाना होता शतानंद, जैसे यहाँ पे सुमंत्र जी थे महाराजा दशरथ के यहाँ, तो महाराज जनक क्या कहते हैं? शतानंद। तो शतानंद किसके पुत्र हैं? ये अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र थे। लेकिन जब यहाँ खुशहाल रह रहे थे तो इंद्र से नहीं रह गए, इंद्र हर हालत में अहिल्या के साथ संभोग करना ही चाहता था, किसी भी हालत में, माने जिस तरह से उसका जो भी करना था। तो एक दिन वो ताक में लगा था, एक दिन प्लान बनाया उसने है ना। कई विद्वान थे भी कहते हैं कि चंद्रमा का भी सहयोग लिया था, चंद्रमा ही वो मुर्गा बने थे ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो भी है कि वो सुबह के समय उसने रेकी की एक तरह से, इंद्र को पता था कि सुबह उठ करके 4 बजे गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो वो बड़ी कड़ी नज़र रखता था गौतम ऋषि के आने जाने पर, कड़ी नज़र रखता था। तो गौतम ऋषि को पता चल, उसको पता चल गया कि सुबह सुबह जाते हैं। तो उस दिन क्या उसने ऐसा योजना बनाई थी इंद्र ने, राजा इंद्र, कि सुबह 4 बजे से पहले ही और मुर्गे की आवाज़ निकाल दी है ना, क्योंकि उसमें अलार्म वाज तो होता नहीं था कि अलार्म वाज लगाया और उठे, उसमें मुर्गा ही उठाता था है ना। अब बताया गया कि मुर्गा जो ठीक 4 बजे वो बोलता है ना, ऐसा लोग कहते हैं है ना। तो मुर्गे की आवाज़ जब सुना गौतम ऋषि, तो गौतम ऋषि जो है कहकर तो सुबह 4 बज गए और तुरंत तो तैयार होकर के गंगा जी स्नान करने के चले गए। जब गौतम ऋषि बाहर चले गए कुटिया छोड़ करके, आसन छोड़ करके, तो ये जो इंद्र था ये घात लगाए बैठा हुआ था, वो तुरंत अपना भेष गौतम ऋषि का बना करके और अहिल्या के सामने खड़ा हो गया और उनसे जाते ही कि मैं संभोग करना चाहता हूँ ऐसा प्रस्ताव रखा। तो अहिल्या को देखते ही है ना वो समझ गए, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल पति था गौतम ऋषि, तो ऐसे असमय में ऐसा प्रस्ताव तो कभी रखा ही नहीं राइट, जब से शादी ही तो ऐसा कोई प्रस्ताव रखा नहीं है ना, असमय में ऐसा प्रस्ताव रखेगा जरूर एक कोई छली कपटी है। तो जब ध्यान से देखा वो पहचान गए कि क्योंकि जो देवता होते ना उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, उनकी पहचान क्या है? उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। तो उसने देखकर समझ गया क्योंकि ये तो इंद्र हैं है ना। तो इंद्र को पहचान करके भी उसके दिल में ये बात खुश हुई कि देखो मैं कितनी खूबसूरत सुंदर हूँ कि इंद्र भी मुझे जो है पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए उनका प्रस्ताव उसने ठुकराया नहीं और संभोग किया है। और संभोग करने के बाद तब जो है उसने बोला कि अब आप गौतम ऋषि मेरे पति के आने से पहले आप भाग जाओ यहाँ से। इंद्र जो है जब भागने लगा उसी समय गौतम ऋषि आ गए। अरे चोर की तरफ भागा चला जा रहा है, चोर की तरफ भागेगा ही, जो इतना गलत काम किया चोर के भागा। इंद्र की नजर पड़ गई, तब गौतम ऋषि तत्काल से समझ गए सारे हालात को देख करके, है ना। उन्होंने तुरंत क्या कर लिया, उसको श्राप दे दिया, नपुंसक का सर तो नपुंसक बन जाओ, तुम्हारे अंडकोश गिर जाएंगे, उनको नपुंसक बना दिया। अब तब अपनी पत्नी अहिल्या के पास आए, वो भी जो है कांप रही थी, है ना, उसको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, है ना। फिर अन्य भी ने उसने किया कि उद्धार होगा जब भगवान राम आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन अभी तो पत्थर बना दिया। इतना श्राप दे करके गौतम ऋषि भी उस आश्रम को छोड़ करके अंदर चले गए। ऐसा हुआ। तो हे राम, ये कथा कौन सुना रहा था, विश्वामित्र। विश्वामित्र जिनका कि हे राम अब आपका समय आ गया है, है ना, और आप अपने चरणों से इस अहिल्या का क्या करिए, उद्धार कीजिए, ये ब्रह्मा की पुत्री है, इसका आप क्या करिए उद्धार करिए, है ना। तब भगवान राम जो है अपना दाहिना चरण जो है वो जो पत्थर की शिला वहाँ के रूप में थी अपना भगवान ने चरण स्पर्श कराए, उठा करके उसके सर पे उसके ऊपर ऐसे रखा, जैसे ही चरण रस स्पर्श हुआ वो शिला तुरंत जो है शिला में से एक सुंदर अहिल्या प्रकट हो गई, है ना। तो बताया गया है कि इनका वो है ना परसद पत्ताओं से जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई तो वास्तव में भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र सब देखते रह गए कि जैसे उन्होंने सुना था उसकी सुंदरता उस एकदम उसी तरह से, है ना, भगवान भी सब देखते रहे। और जिस भाव से उसने भगवान की प्रार्थना की अहिल्या ने, है ना, वो आप लोग सुनिए। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय, खूब जोर से जय श्री राम। परशत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सई।
परशत पद पावन नशावत प्रकट भई
तब पुंज सई। देखत रघुनायक जन सुखदायक सम्मुख हुई कर भोरि सही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख में आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी जुगल नयन जल धार गई।
तो भैया है उसके आंखों से जल की धारा बहने लगी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हमारे प्रभु आएंगे और हमें पत्थर से दोबारा हमें इस योनि में नारी योनि में डालेंगे। इससे उसके आंखों से आंसू बढ़ रहे थे।
श्री रजु मन कीना प्रभु कहीं चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अष्ट ठानी ज्ञान ब्रह्म जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुखदाई।
बोले कि मैं अपवित्र नारी हूँ लेकिन आप पूरे जगत को पवित्र करने वाले हैं और आज आपने मुझे पवित्र कर दिया, माने मुझ अपवित्र पर भी आपने अपनी कृपा कर दी।
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण मुनि साप जो दीना अति बल कीना परम अनुमाना। बोले भैया कि मेरे पति गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया है लगता है वो मेरा मेरे लिए आशीर्वाद था। अगर मेरे पति ने मुझे ये श्राप नहीं दिया होता तो शायद मैं आपका दर्शन नहीं कर पाती, आपके चरण मेरे सर पर नहीं पड़ते, ऐसा बोले। देखो भर लोचन हर भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। कहे प्रभु मैं आज जिन परम भगवान को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी दिन रात लगे रहते हैं, आज हमारे पति को श्राप की कृपा से आशीर्वाद से मैं आप अपने आंखों से आपको मैं देख पा रही हूँ। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो पर वो रही है कि मेरे मति मारी गई है, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, इससे मैं कोई वरदान मैं नहीं मांग सकती। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुत करे पाना। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि आपके चरणों का रस का जो रस का रस है मैं उसका पान करूं, इससे बड़ा आप में क्या मिल सकता है। जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शिशरी सोई पद पंकज के ही पूजत अज मम सिर तो कृपाल रही। जिसे चरण कमल की लोग पूजा करते हैं है ना, आज वही चरण कमल मेरे सिर पर है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी जो अति मन भावा सोबर पावा मैं पति लोक आनंद भरी। तो अहिल्या कितने सौभाग्यशाली थी है ना, कभी कभी ऋषियों के जो श्राप होते हैं ना वो वरदान में परिणत हो जाते हैं, इसलिए करे कि मुझे जो श्राप दिया गया वो आज माले वरदान साहित हुआ, अगर मुझे श्राप नहीं दिया होता तो शायद आज आपके दर्शन नहीं होते। जीत पद कमल को पाने के लिए दर्शन करने लोग तरसते हैं आज जो हमारे सर पे हैं है ना, और मैं आज अपने पति के लोग पुनः जा रही हूँ पवित्र होकर। उसी समय जब प्रार्थना कर रही थी अहिल्या, जानते हैं उस समय भगवान राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न जिस भाव में उसकी प्रार्थना से द्रवित हो गए, और उसी समय जो है गौतम ऋषि भी आ गए है ना, क्योंकि ये वरदान था कि जब भगवान राम का स्पर्श करके अहिल्या परम पवित्र हो जाएगी तो गौतम ऋषि पुनः उसको स्वीकार अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और फिर अपने पति लोक में जा करके आनंद उठाएगी। उसी भगवान जब गौतम ऋषि जी आए तो गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों भगवान के चरण वंदना की और तब भगवान आगे निकलते हैं और दोनों पति पत्नी गौतम ऋषि और अहिल्या फिर अपने आश्रम में रहना आरंभ कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कितने कृपालु हैं है ना, कि उनकी कृपा से आज दो स्त्रियों का उद्धार हुआ। भगवान के हाथों जो भी मारा जाता था है ना, जो भी भगवान जिसको टच करते थे है ना, उसका उद्धार हो जाता था है ना। यहाँ पे बताया गया है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि जो राक्षसी ताड़का थी है ना, उसको मारा और उसको मारने के बाद उसका भी क्या हुआ, उद्धार हुआ। क्योंकि भगवान के हाथों जितने भी राक्षस मारे गए ये सब का क्या होता गया, उद्धार होता गया है ना। क्योंकि साधारण भगवान के हाथों जिसका स्पर्श हो जाए तो एक
स्त्री जो ताड़का के रूप में त्रासित थे, भगवान ने उसको मार करके तार दिया, और एक दूसरी स्त्री है उसको कैसे तार रहे हैं, अपना चरण स्पर्श करा करके तार दोनों करा रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान की भक्ति करने से ही आनंद है। तो हम सब अगर भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान हमारे पर क्या करेंगे, कृपा करेंगे करेंगे। कि भगवान कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु कहलाते हैं। इसलिए तो भगवान ने इसलिए अपनी कृपा करके आज देखो अहल्या का क्या कर दिया, कल्याण कर दिया, वो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। उसके बाद जब अहल्या का उद्धार हो गया, तब भगवान जो है विश्वामित्र के साथ आगे निकले। जब विश्वामित्र जा रहे थे, है ना, तो भगवान ने बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम से वो बात कर रहे थे कि राम अब कुछ ही समय में जो महाराज जनक का स्थान है अर्थात मिथिलापुर, वो आने वाला है। विश्वामित्र जब मैथिल प्रदेश में पहुंचे तो बहुत ही रमणीक जगह, क्योंकि उस समय हरियाली बहुत अच्छी होती थी, है ना, सुंदर बाग बगीचे सरोवर, है ना। अब आजकल तो पानी नहीं मिलता, सरोवर कहाँ रहेगा, पानी पीने के नहीं मिलता, नहाने के लिए कहाँ से मिलेगा, बहुत थी। लेकिन उस समय राज में चारों तरफ बड़े बड़े सरोवर, तालाब, कुएं, बाग बगीचा, हरियाली सब थे। तो जैसे मिथिला पहुँचे तो महाराज जनक के राज में पहुँचते ही एक जगह उन्होंने क्या किया, विश्राम किया, बैठे। तो भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र का चरण पर चरण दबाते थे, है ना, बहुत सेवा की, अपने गुरु की सेवा, है ना, बड़े मन लगा करके वो सेवा कर रहे थे, है ना। तो बातों बातों में वर्णन कर रहे थे। तो जब शाम हो गई, उसका रात हो गई, सोए, जब सुबह हुई तब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र पूजा कर के लिए फूल चोन तोड़ने के लिए गए। कहाँ पे गए, जनक वाटिका में। जनक की एक बहुत सुंदर वाटिका थी, पुष्प वाटिका, है ना। तो पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए राम और लक्ष्मण वहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं। और उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ, है ना, उनकी सखियों, अपनी सखियों के साथ वो भी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे गौरी पार्वती जी का बहुत ही बढ़िया एक मंदिर था पुष्प वाटिका में। तो गौरी पूजन के लिए वो जाती थी, वो गई थी। तो जब वहाँ पे वो गई थी, इधर राम और लक्ष्मण भी पुष्प चयन करने गए, तो कई सखियाँ थी, उसमें एक सखी थी, उसकी नज़र जो है किस पे पड़ी, राम और लक्ष्मण पड़ी। तो उसमें सीता जी मंदिर में थी, है ना, वो दौड़ करके सीता जी के पास दौड़ जाती है, कि क्योंकि बहुत सुंदर दो सुकुमार की ऐसी सुंदरता आज तक तो मैंने कभी देखी नहीं। वो जो सखी थी भगवान राम की सुंदरता को देख करके वो इतनी प्रभावित हो गई और सीता जी के पास दौड़ गई कि मैंने देखी नहीं थी। अब वास्तव में भगवान राम बहुत ही मनोहर, उनकी चितवन, चलने का तरीका, कोमलता, सुंदरता, शब्द बोलने का चयन इतना सुंदर था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भाग जाते थे। जब दंडकारण्य वन में बताया गया उनके बारे में कि भगवान जब जा रहे थे, है ना, तो जब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना, उनको देख करके उनकी इच्छा हो जाती थी कि अगर ये मिल जाए तो उनको गले से लगा ले, माने आलिंगन कर लें, माने जो ऋषि मुनि थे इन ये पिघल जाते थे, स्त्रियों का तो बुरा हाल हो जाता देख करके। तो वही हाल किसका हो गया, सखी का हो गया, और दौड़ करके सीता जी के पास गए। सीता जी को जिस भाव से बताए, सीता जी से रहा नहीं गया, वो भी उसी ओर गई, है ना। अब वो दोनों भाई क्या करते, पुष्प चयन में लगे हुए थे। और इतने में लता के जो लता होती उसके पीछे से सीता जी ने देखना शुरू किया। जब सीता जी की नज़र भगवान राम पे पड़ी तो अपलक हो गए, उनकी पलकें जो गिरती है ना गिरने बंद कर दी है, और गिरना ही भूल गए, इतनी सुंदरता आकर्षित हो गई सीता जी। और उधर राम की नज़र जब सीता जी पड़ी तो बताया कि दोनों की जब नज़र मिली उस समय की कल्पना कभी लिख ही नहीं सकता है, बिल्कुल जैसे पूरा समय ठहर गया हो एक पल के लिए, ऐसी स्थिति थी है। अब सीता जी के दिमाग में आ गया कि अगर माने पहली चितवन में पहली मुलाकात में ही सीता जी ने ये स्वीकार कर लिया कि अगर मेरी शादी हो तो किसके साथ हो, इनके साथ हो, क्योंकि देखा जाए तो है ही उनकी भाई लक्ष्मी के रूप में अंश हैं सीता जी और स्वयं प्रभु हैं राम हैं। लेकिन इस तरह से अब वहाँ से हिलना चाहिए तो जो दूसरी सखियाँ थी तो उनको हिलाया कि भाई अब इधर तो देखो कि बार बार उधर देखते हो कि भाई वापस चलना भी है ना। अब क्या करें, समय ठहरता कि जी चाहता है जी भर देखती रहें और जी भर देखना चाहती थी, लेकिन समय ठहर नहीं रहा था, समय उनको क्या करता है खींच रहा था। तो सखियों ने कहा कि असखियाँ सब समझ गई है ना कि अब क्या भाव हो गया कि नहीं चलिए। अब वहाँ जो है अब सीता जी के मन में कई विचार हो रहे हैं। सीता जी सोच रही हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत कठोर प्रतिज्ञा कर ली है, क्योंकि ये जो बालक हैं बहुत भगवान राम का इतने सुंदर सुकोमल है ना, अगर इन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो मैं तो इन्हीं के साथ शादी कर लेती है ना। अब ऐसा कई प्रकार का विचार मन में उमंगे तरंगे लेकर के सीता जी वापस, और जब से उन्होंने सीता जी ने देखा तब से वो भगवान राम के बारे में ही वो सोच रहे हैं। इधर भगवान राम लक्ष्मण वापस आए है ना और पुष्प दिया विश्वामित्र जी को और वो अपना पूजा पाठ किए, और तब भगवान राम भी चाहते थे कितनी जल्दी स्वयंवर में चला जाए। तो दूसरे दिन जो है महाराज जनक के दरबार में जितने भी राजा महाराजा है पूरे विश्व के राजा उन्हें बताया गया है, आप विश्वास करेंगे कि रावण बाणासुर जितने बड़े बड़े राजा थे बलवान ये सब के सब आए थे है ना, और धनुष को उठा करके तोड़ना चाहते थे, क्योंकि हर राजा सीता से शादी करना ही चाहता था, जैसे अहिल्या के साथ था कि सुंदरता वास्तव में सबको आकर्षित करती है ना, तो वो जो सीता जी की सुंदरता थी है ना वो लोग इतने आकर्षित थे कि सब चाहते थे है ना, लेकिन क्या करें इतनी कठिन प्रतिज्ञा थी, धनुष कोई तोड़ने की तो बात छोड़े कोई हिला भी नहीं सका था, रावण भी आया बाणासुर सब लोग आए और चले गए है ना, इतनी कठोर धनुष थी। तो सीता जी यही सोच रहे हैं कि इतनी कठोर धनुष है, हमारे प्रभु जिसको मैं चाहती हूँ है ना वो इतने सुकोमल हैं कैसे तोड़ेंगे है ना, तो ऐसा सब विचार चल रहा है ना। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कौतूहल हैं, जब महाराज जनक के दरबार में गए तो भगवान महाराज जनक मिलने किया है विश्वामित्र जी से, तो उन्होंने परिचय दिया राम के बारे में लक्ष्मण जी के बारे में, पिताजी का नाम बताया, फिर ये दोनों भाई को क्या किया गया राज दरबार में बैठाया गया, बताया गया कि वहाँ से हजारों हजारों राजा जितने भयानक भयानक दुष्ट राजा साधु राजा हर प्रकार के छल छली कपटी दुष्ट हर प्रकार के राजा, क्योंकि शादी सब करना चाहते थे इसलिए सब आए थे धनुष तोड़ने के लिए, तो पूरा दरबार चारों तरफ से भरा हुआ था राजाओं से है ना, और बीच में जो है ना समुद्र ओ जो धनुष थी विशाल धनुष शंकर जी की रखी गई थी है ना, जैसे 500 पहलवान लेकर के आए थे उसको इतना वजन थी है ना, और धनुष स्वयंवर के लिए धनुष रखी गई थी सारे राजा, और जब जैसे आप लोग सब बैठे थे सारे राजा महाराजा बैठे थे, और उसी समय इनकी मारी कौन प्रवेश किए उस दरबार में, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र, आगे आगे विश्वामित्र और दोनों भाई पीछे पीछे, जिस अंदाज में वो लोग राजसभा में प्रवेश किए, इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण पर नजर गई, जितने राजा बैठे थे है ना, सबकी नजर किसकी ओर गई, राम की ओर है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें इतना बढ़िया वर्णन किया गया है, ये बहुत डिटेल में है, इतना हम नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो सब के सब देखते रह गए, अपलक देखते रह गए, लेकिन भगवान को जितने लोग थे जिनकी जैसी भावना थी है, ऐसे भगवान सबको दिख रहे हैं। तो आप लोगों ने एक चौपाई सुनी गई, जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तीन तैसी, ये चौपाई इसी समय आती है। यही दृश्य है कि जितने भी राजा महाराजा थे जिसकी जैसी भावना थी, भगवान प्रभु को लोग उसी रूप में देख रहे हैं। तो बताया गया है कि जो बहादुर राजा थे, रणधीर वीर जो राजा थे, पहलवान है ना, अपने आप को महाबली, ऐसे राजा को भगवान जानते कैसे नजर आते थे, कि जैसे वीर रस अर्थात वीरता स्वयं आकर के खड़ी हो गई, माने भगवान महावीर लग रहे थे, जितने वीर थे सब जैसे वीर रस स्वयं आकर के खड़ा हो गया। उसके बाद जो दुष्ट लोग थे है ना, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, भगवान उनको ऐसे लग रहे थे जो स्वयं भय आकर के प्रकट हो गया हो, सब भयभीत हुए, जितनी छल कपटी थे सबको भगवान महाकाल के रूप में, जैसे काल के रूप में नजर आ रहे थे, अर्थात जिनकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी, जो जिस भाव के थे भगवान को, वो भगवान को उस भाव से भगवान उसको नजर आ रहे हैं, ऐसा है सब। और महाराज जनक सब लोग देखते रह गए, आकर के एक जगह भगवान बैठ गए। अब जितने भी राजा थे है ना, एक के बाद एक आने लगे और धनुष को तोड़ने का प्रयास करें, कुछ तो ऐसे राजा थे कि धनुष को उठाने जब खुद ही गिर जाते थे, उनको उठाने के लिए दबा भी चाहिए, वो धनुष उठाने गए थे हेलो खुद ही गिर गए, उनको उठाने के लिए दबा भी गए, इतना सुना ऐसी थी। फिर सारे राजाओं ने कहा कि सारे 10,000 राजा एक साथ उठ करके सब मिला करके उठेंगे, तो हुआ भाई तो शादी तो एक ही गए, तो अगर धनुष उठा के तोड़े तो शादी कैसे करेंगे, कहीं पहले धनुष तो उठे बाकी बाद निपटा जाएगा क्या किया जाए। फिर भी धनुष को टच हिला भी नहीं पाए। उसी समय जो महाराज जनक का एक दूत आया और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष है ही नहीं, ये पूरी पृथ्वी वीरों से क्या हो गई है, रिक्त हो गई है, खाली हो गई है। जैसे ही ये बात बोली, लक्ष्मण जी खड़े हो गए कि आपने कहा कैसे, मुझ जैसे रहते हुए है नहीं, भगवान राम के रहते, राम के रहते हुए, हम दोनों भाई के रहते हुए ऐसी वचन आपको कहने की हिम्मत कैसे पड़ गई है ना, क्योंकि अगर भगवान की, राम की अगर भाई किया आदेश हो तो इस धनुष को उठा करके कितनी बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लूं है ना, भाई उस शेषनाग के अवतार है ना जो पूरे पृथ्वी का भार उठा सकता है, तो धनुष को निकले क्या कुछ नहीं था। सब जितने राजा थे आए थे अपना, वो सब देख रहे कि एक छोटा सा बालक ऐसा बोल रहा है, हम इतने बड़े पहलवान कुछ नहीं कर पाए, ऐसा बोल रहा है, सब दहशत खा गए। लक्ष्मण जी बहुत ही तेज तर्रार थे और राम उतने ही शांत स्वभाव के, मधुर स्वभाव के थे है ना, बोले कि बड़े धीर गंभीर से है ना। तब भगवान राम इशारा किया, शांत हुए। तब विश्वामित्र ने कहा कि राम आप आगे बढ़े धनुष की ओर, और महाराज जनक का जो दुख है उसको आप क्या करिए, दूर कीजिए। महाराज जनक वो दुखी थे, दूर कीजिए। विश्वामित्र समय जाने, रावण बहुत दुष्ट था, रावण नहीं चाहता था कि राम और सीता का विवाह हो। उसने क्या किया कि आप जानते हैं राहु, राहु और शनिचर, ये तीनों को बंधक बना के रखा था किसने? रावण ने। रावण ने शनि की ड्यूटी लगाई कि तुम जाकर के कुछ ऐसा शनि ग्रह करो कि किसी तरह से इन दोनों की बात ना हो। शनि किसका पुत्र है कौन बताएगा? सूर्य का पुत्र है। जब रावण को रिलीज किया गया वहां से, रावण रिलीज करके शनि को भेज रहा था, तो सूर्य को ऐसा नहीं हुआ। भगवान सूर्य ने अपने बेटे को रोका कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब विश्वामित्र उस समय यहाँ से देख रहे थे, जब इसमें सब बातचीत चल रही थी तो विश्वामित्र की नज़र सूर्य और शनि के बीच में थी और उनके पावर से जाना थे, तो उनको अर्जा कर वापस किया, ऐसा बताया गया, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है ना। और जो राहु था है ना, राहु वो चुपके से आके जो धनुष ने पीछे आकर के नीचे, धनुष के नीचे चिपक गया था, इसलिए कोई उठा नहीं पा रहा था। लेकिन जब ये घोषणा कर दी गई कि पृथ्वी वीरस काल यहाँ कोई राजा नहीं है, है ना, तो वहाँ से भाग गया है ना, वो छोड़ दिया, वो जगह ही छोड़ दी। और जा करके रावण से बोला कि अब तो सब चले गए, घोषणा हो गई, अब कोई पृथ्वी वीर हो कोई खाली है कोई, तो असन गया। तो इसी समय अब विश्वामित्र ये दोनों बात जान रहे थे, है ना, इतनी बड़ी तपस्या वो सब जान रहे थे। उन्होंने कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, यही शुभ समय था, उनको पता चल गया कि यही समय सही है, है ना। उधर शनिचर का भी काम तमाम हो गया है, राहु भी छोड़ चला गया है, अब सब सही सही है, है ना। तो कहा कि विश्वामित्र कहा कि ये राइट टाइम है, आप आगे बढ़िए। भगवान राम गए, है ना, तो भगवान जैसे ही धनुष के सामने पहुंचे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, सारे राजाओं की नजर जानते किस पर थी? भगवान पे थी। सारे राजाओं की नजर किस पे थी? राम पे थी। और राम की नजर किस पे थी? धनुष पे थी। भगवान जब धनुष के करीब गए तो एक नजर से सारे राजाओं की ओर देखा, सबको एक क्लॉकवाइज ऐसे नजर दौड़ा, सब देखा। और जैसे ही उनकी नजर सीता जी पड़े, कि सीता जी जयमाल लेकर खड़ी थी, यही तो जब स्वयंवर होता तो ऐसी था कि धनुष थी और सीता जी जो है जयमाल लेकर खड़ी थी कि जो तोड़ेगा उसी पर जय वरमाला पहनाएंगे, है ना। तो लेकिन जैसे ही सीता की नजर पड़ी भगवान राम की, भगवान सीता जी को देख करके तुरंत भगवान समझे कि अगर हम इस समय धनुष को नहीं तोड़ते हैं तो सीता जी क्या हालत हो सकती है। और उस समय सीता जी की हालत थी, जितनी भी देवी देवता थे किसी को नहीं छोड़ा था, सबसे प्रार्थना कर, पार्वती जी से तो बार बार कि मैंने इतने दिन तक आपकी तपस्या करते हैं इसी दिन के लिए कि धनुष किसी तरह से यही तोड़े, सब देवी देवता को मना रहे थे। और सीता जी की नज़र पड़ते ही भगवान ने तुरंत अब धनुष पर ऐसी नज़र डाली कि इतनी वजन धनुष भगवान को कुछ पता ही नहीं कि भगवान कब उसको उठा लिए, कब चढ़ा के चढ़ जा, टूट गई धनुष पता ही नहीं चला है, इतनी तेजी से काब हुआ है ना कि कोई देख ही नहीं पाया, किसी को समझ नहीं पाया, जितने रोज बढ़ से कि बताया गया है कि भगवान इतनी तेजी से ये सब काम किया, किसी की समझ में नहीं, धनुष टूट गई। और जब धनुष टूटी तो इतना भयानक आवाज हुआ, तब जाकर लोग होश आए, भगवान ऐसे मोहित कर दिए थे, इस तरह से भगवान वहाँ पर सीन क्रिएट कर दिया है। अब देखते धनुष टूट गई, अब जो भयंक बन कर यही आवाज़ बहुत दूर तक अब पहुँची। अब चाप जितने भी साधु राजा थे वो तो प्रसन्न हो गए, अब दुष्ट राजा जो है उनको खलबली मच गई, अब तो इसकी शादी हो जाएगी, इतनी सुंदर सीता हमको नहीं मिलेगी। तो ये लोग प्लान क्या बनाए कि हम लोग सबको लड़ करके इसको दूध में परास करके हम सीता जी को जबरदस्ती ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, है ना। जब आदमी धनुष तोड़ सकता है तो तुम्हें तो उड़ी सकता है, ये सोचना चाहिए उनको, नहीं नहीं हम ऐसा करें वैसा करें कुछ नहीं। इतने में महाराज जनक ने क्या किया, सीता जी को आदेश दिया। सीता जी परम प्रसन्न है ना, क्योंकि मन की जो उनकी मुराद थी अब क्या हो रही है, पूरे पूरा हो रहा है ना, जो सोचते थे अब सीता जी जो है अपने सखियों के साथ छम छम करके चल दी धीरे धीरे है ना, अब प्रसन्न भी है लेकिन इतनी उत्सुक भी है, लेकिन उत्सुकता दिखा भी नहीं सकती, उत्सुकता भी है हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति है। अब सखियाँ जो है उनको लेकर आती हैं, जब आमने सामने होते हैं जयमाला ले करके है ना, तो सखियाँ जो है ना वो एक गीत गाती हैं, क्योंकि भगवान राम तो अपना ऐसे करें तो सीता जी थोड़ा छोटी थी लंबाई में है ना, तो ऐसा होता है तो सीता जी की जो सखियाँ थी उन्होंने बहुत सुंदर एक प्रार्थना की कि झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, कि हे भगवान राम अब थोड़ा सा झुक जाइए क्योंकि मेरी जो लली है सखी है छोटी सी है ना, आप झुक जाइए ताकि ये जो बरमाला है आराम से पहना सके। तो इस तरह थकत थकत मेरे पाँव दुखत हैं, कि माने खड़े खड़े हमारे पाँव दुख रहे हैं, अब आप ज़्यादा देर में थोड़ा सा झुक जाइए, तो भगवान थोड़ा सा ऐसे करते हैं और सीता जी क्या करते हैं जयमाल करती, सारा देव समाज पुष्प वर्षा करता है, बोलो श्री राम जी की। तो इस तरह से भगवान ने बड़ा कष्ट जो है ये दूर किया और सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए हैं, सब पुष्प वर्षा किया, सर लोग प्रसन्न हुए और तुरंत महाराज जनक ने क्या किया, दूध भेजा कहाँ, दशरथ जी के पास। चार दिन लगे, चार दिन के बाद दूत वहाँ पहुँचे, बताए कि आप लोग जो है बारात ले करके आइए है ना, और 39 दिन है ना बारात जो है वहाँ से बारात आई है ना, बड़ा महाराज दशरथ इतने प्रसन्न है, भरत शत्रुघ्न को लेकर के बड़ी तामझाम के साथ बड़ी बारात लेकर के कहाँ पहुँचे, महाराज जनक के यहाँ। महाराज जनक ने जितने बाराती थे सबके लिए भव्य स्वागत किया, सबके लिए अलग अलग कमरे पैलेस महल सबको ठहरने की सारी व्यवस्था, कि पहले जब बारात जाती थी तो दो दिन रुकती थी है ना, हम लोग पुराने जमाने में ऐसा होता है बारात जाती थी एक दिन ठहरती थी फिर तीसरे दिन चौथे दिन आती थी, ऐसा भी होता था है ना, तो सारे बारातियों के भव्य ठहरने की सब व्यवस्था की गई और शुभ लग्न का जो है कि इंतजार किया गया। और जब हो गया तो ये हुआ कि अब जो शादी जब हो ही रही राम के साथ तो बाकी जो तीन भाई हैं वो बिना शादी के क्यों जाएं है ना, अब आए हैं तो सबकी शादी कर दी जाए है ना, तो लक्ष्मण जी की शादी उर्मिला के साथ तय हो गई, क्योंकि जनक जी के भाई थे है ना, उनकी दो पुत्री थी है ना उर्मिला मांडवी, अब भरत के साथ जो है मांडवी की शादी कर दी। तो इस तरह से चारों भाई की जो है शादी जब हुई, बड़ा ये पढ़ें अच्छा है कि जिस समय मंडप में है ना जब शादी की, देखो आज जो विवाह की पद्धति होती है आप लोग जो विवाह देखते करते हैं ये सब शुरू से ऐसा चला रहा है, भगवान राम की भी शादी उस जो हम आप विधि आज करते हैं ये विधान पहले से चला आ रहा है, वही विधान अब धीरे धीरे शॉर्टकट होता गया, पहले तो बहुत समय लगता था पूरा रात बीत जाती थी शादी की पूरी पद्धति करते करते है ना, अब तो एक घंटे में शादी लोग कर लेते हैं, अब पंडित बोलते हैं और जल्दी हो जाता और अच्छा है ही नहीं, लेकिन पहले हम लोग को पता है कि शादी प्लस सुबह रात 10 बजे शुरू होते थे, होते होते सुबह 3-4 बज जाते थे है ना, फिर 5-6 बजे विदाई होती थी, शादी होती रहती थी, मतलब इतने सिस्टम इतने संस्कार इतना सब था। तो उसी विधि विधान से जो है अगर आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र रामायण में कि भगवान की जो शादी की जो पद्धति है कि उसमें दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, सारी वंशावली जैसे कहते ना कि लड़के का नाना क्या है नानी क्या है दादा, तो ऐसे इनकी वंशावली एक दूसरे पूछते हैं कि महाराज जन किस वंश से आते हैं उनके किस वंश से आते हैं सब है ना, ये तो सब फॉर्मेलिटी थी कि उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया तो शादी तो होनी थी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी है ना, इसलिए बहुत ही जो है ढंग से ये हुआ। तो ये बताया गया कि किस तरह से बस हम एक ही जो उपाय पढ़ेंगे कि बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकित सुरतर फल नये भरी भुवन रहा उछाहु राम बुबाहु बा सब ही कहा कहीं भांति बरन सिरान रशना एक बहु मंगल माम तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज शमारी के मांडवी सुत्रकृति उर्मिला कुमार लई हकारी के। अच्छा मांडवी सुत्रकृति उर्मिला ये सब को लेके आए। कृष्ण के कन्या प्रथम जो गुण शील सुख सोधामयी शबरीति प्रीति समेत कर सो ब्याह निक भरत गई। तो एक तरफ चारों राजकुमार और चारों कुमारियां दोनों बैठा दी गई मंडप में ऐसे साधु हो रहे। जानकी लघु भगिनी शकल सुंदर शिरोमणि जान के सो तनय दीन ब्याहि लखन शकल विधि सम्मान के। इस तरह से चारों भाइयों की शादी जो है बड़े विधि विधान के साथ शास्त्र पूजित के साथ हुआ और बड़ा दहेज भी जो है दिया गया। ये जो दहेज प्रथा है शुरू से चला आ रहा है। ये जो अपने माता पिता होते हैं जब बेटी की ब्याह करते हैं तो सामान भी खूब देते हैं, जबकि दशरथ के पास किसी चीज़ कमी नहीं थी, लेकिन इतना फर्ज होता है तो खूब बढ़िया सब सारी व्यवस्था हुई। लेकिन ये सब खुशी का वातावरण चल ही रहा था है ना, जानते क्या हुआ, बड़ा भूकंप जैसा एक अंधकार तूफान जैसा आ गया। जानते कौन आ गया उस तूफान में? परशुराम जी। कौन आए? परशुराम जी। कहते ना सैंड इन स्वीट राइस, कि खीर में अगर आप बालू डाल दो तो मजा किरकिरा हो जाता है, राइट, स्वाद किरकिरा हो जाता है। अब कहाँ इतना सुंदर वातावरण शादी विवाह का सब कर और उसमें एक सैंड आ गया, बालू की कड़ आ गया है ना। कौन आ गए? परशुराम जी। अब परशुराम जी आते ही गुस्सा कर गए है ना, क्योंकि उनको नजर में देखे धनुष टूटी हुई पड़ी हुई थी है ना, धनुष टूटी हुई पड़ी हुई थी। तो उन्होंने फरसा लेकर चमकाया चारों तरफ कि कौन है जिसने धनुष को तोड़ा है। सब सन्न रह गए कि परशुराम से सभी डरते थे है ना, जो 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया पूरे पृथ्वी से है ना, उससे कौन नहीं डरेगा। बहुत क्रोध थे, वो भी शक्तिशाली अवतार हैं भगवान के ही। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया कि लक्ष्मण जी गर्म दल के थे, वो थोड़ा जोश में आकर के बड़ी तीखी बांस लक्ष्मण जी से परशुराम से है ना, इतना गुस्सा करे लक्ष्मण जी के बोने पर। लक्ष्मण जी इस तरह से उनसे बात किए है ना कि ऐसी धनुष तो हमने लड़काएं बहुत तोड़ी थी जब हम लड़का थे, मान छोटे से बालक थे, ऐसी धनुष तो हमने कितनी धनुष तोड़ी थी है ना, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। देख कितनी बढ़िया बात की। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी से कि परशुराम जी जब हम लड़का थे, जब हम बालक थे, ऐसे कितनी धनुष हमने तोड़ दी थी और तब तो आप कुछ नहीं बोले, और आज एक पुरानी धनुष जो है टूट गई है तो आप इतना तमतमाव के गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग खुद बताइए कि ये लक्ष्मण जी कौन सी कथा उनको याद दिला रहे हैं? एक कथा सुनना चाहते हैं? कब की घटना है या जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। जब लड़का थे तक इतनी धनुष कहाँ तोड़े थी? उनको याद दिला रहे हैं कि जब हम लड़काई में बचपन में सारी धनुष तोड़ दी थी तब तो आप गुस्सा नहीं किए, तब भी आप थे, धनुष नहीं तोड़े, और अब जब एक धनुष तोड़ते आप इतना हम गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? परशुराम जानते इस बात पे खींच गए लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब वो कथा आपको सुनाता हूँ। ऐसा ये बात लक्ष्मण जी जानते क्या दिना रहे कि जब परशुराम जी अपने चरम पे थे तो कितने क्षत्रिय राजाओं को 21 बार जो भी पृथ्वी पर मिलता था सबको मार मार कर जान से मार करके सबका धनुष मार लेकर के अपने आश्रम इकट्ठा करके रख दिए थे। हजारों हजारों धनुष है ना बाण सब उनके आश्रम में रखा हुआ था पड़ा हुआ था है ना। तो शेषनाग जी ये लक्ष्मण जी कौन है शेषनाग होता है शेषनाग जी। तो पृथ्वी माता जो थी अब पृथ्वी माता को धारण कौन करते हैं शेषनाग जी। तो शेषनाग जी और पृथ्वी माता दोनों ने सलाह किया कि अगर ये धनुष जो इतना परशुराम इतना इकट्ठा करके रख रहे हैं इसका कुछ नहीं किया गया तो कल अगर यही धनुष रासों के हाथ में पड़ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया। शेषनाग जी कहते हैं कि मैं छोटा सा बालक बन जाता हूँ, अहे पृथ्वी माता आप मेरी माता बन जाओ। अब पृथ्वी माता माता बन करके समझा और शेषनाग जी उनका पुत्र बन गए है ना। अबे माँ बेटे जो है जानते हैं भेष बदल करके किसके पास गए परशुराम जी के पास गए। अब परशुराम जी के पास जा करके माता कहती है पृथ्वी माता अम्मा के रूप में साधारण मन स्त्री के रूप में कि हे परशुराम जी ये मेरा बेटा बड़ा चंचल है ना ये मेरी बात नहीं मानता है ना। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तक मैं आपके आश्रम में रहूँ है ना और आप इसको अपना शिष्य बना लीजिए इसको कुछ सुधार दीजिए कुछ दिव्य ज्ञान दीजिए है ना और हम दोनों माता और पुत्र आपकी सेवा करेंगे। लेकिन चूंकि ये मेरा बालक जो है बड़ा चंचल है बड़ा नटखट है ना अगर कोई बचपना कर जाए कुछ गलती कर जाए तो आप इसको न तो श्राप देंगे ना इसको कुछ दंड देंगे इतना तो आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने वचन दे के ठीक है मैं अगर ये बालक कुछ करता है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं माफ़ कर दूंगा कुछ बोलूँगा है ना। जब ये आशीर्वाद ले लिया तो अब ये माता और पुत्र दोनों क्या किए सेवा करते रहे परशुराम। एक दिन परशुराम जी जो है फिर अपना फरसा लेकर के बाहर निकल गए क्षेत्रों को मारने माने अपने काम में निकल गए जहाँ उनको जाना था। यही मौका मिला तो ये जो बालक थे कौन लक्ष जो शेषनाग जी बालक रहे थे इन्होंने जानते क्या किया जब देखा कि परशुराम जी ने तो जितनी धनुष वहाँ भी इकट्ठी थी सबको तोड़ दिया। क्या किया सारे धनुष को तोड़ दिया है ना। अब कुछ देर के बाद जितने हजारों हजारों धनुष थे सारे धनुष को शेषनाग जी क्या कर दिया सब तोड़ के और कर दिया है ना। तब जब परशुराम जी आए तो जितने धनुष का ढेर लगाए थे सब टूटे ही मिले है ना। इतने में जो पृथ्वी जो माता करूँ गई कह कि क्षमा कीजिए के मैं आपसे बोला था कि मेरा ये बालक जो है बड़ा नटखट है बड़ा चंचल है मैं तो मना कर रही थी लेकिन फिर भी ये लड़का लड़का है छोटा है बालक है तोड़ दिया। अब क्या करें परशुराम गुस्सित बहुत ही है लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे है ना क्योंकि वचन दे चुके थे है ना इसलिए कुछ डेढ़ डटे और शांत हो गए। और उसके बाद फिर जो है कुछ दिन के बाद अब ये लोग विदा हो लिए अगर के तो यही शेषनाग जी कौन है आज लक्ष्मण के रूप में है। तो वही लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं कि जब मैं लड़का था हाँ है ना तब तो इतनी धनुष हमने तोड़ी तब तो आप गुस्सा नहीं किए है ना और आज एक धनुष पे तब तो दोबारा इतना गुस्सा करे और लक्ष्मण परशुराम को याद आ गए है ना कि बहुत तनी लड़काई से कोई छुपाई है कि मैंने लड़काई में हमने इतनी धनुष तोड़ी तो आप तो कुछ नहीं बोले है ना उस समय। तो उस समय इसने बोले कि वचनबद्ध थे आज लक्ष्मण जी के सामने वो वचनबद्ध नहीं है इसे ललकार के परशुराम बोल रहे हैं और लक्ष्मण जी बोल रहे हैं है। तो ये दृश्य वहाँ पर से तो इसलिए लक्ष्मण में और परशुराम में बड़ी बहस है। भगवान राम बोले जब देखा कि बात काफी बढ़ रही कि कभी कभी खिसिया करके फरसा लेके मारने के दौड़ते थे है ना और जब दौड़ते थे तो लक्ष्मण मुस्कुरा देते थे और उनको गुस्सा आता था है ना। तब भगवान राम माहौल को क्या किया शांत किया। भगवान राम खड़े हो गए उन्होंने कहा भगवान राम कि देखिए हम ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, आप एक ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण कोई चैलेंज करता है युद्ध करने के लिए, फिर हम पीछे नहीं हटते, है ना? बड़ी गंभीर बात भगवान की है, हम फिर किस लिए करें, हम तो सम्मान देते हैं, है ना? तब जब, क्योंकि भगवान राम जब ऐसी गुई बड़ी बात जब कही, तब परशुराम जी थोड़ा ठंडे हुए, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये धनुष आप लीजिए और चढ़ाइए। जानते हैं वो धनुष स्वतः भगवान के पास चले गए, तो धनुष किसकी, भगवान ही की थी, विष्णु की धनुष थी, विष्णु की धनुष परशुराम जी के पास थे। परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष आप लीजिए, इसको चढ़ाइए, और धनुष स्वयं चली गई तुरंत खींच गया, तब दंग रह गए, क्योंकि भगवान राम स्वयं विष्णु स्वयं भगवान है, धनुष उन्हीं का है, ले करके जैसे ही बाण चढ़ाया खींचा, भगवान राम ने कहा कि भाई बहुत आप तमतमा रहे थे, अब आपकी सारी शक्ति में खींच रहा हूँ, इस बाण से जो है जो स्वर्ग जाने की आपकी स्थिति है वो भी खत्म कर रहा हूँ, अब आप स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, है ना? सारी शक्ति छीन खींच ली भगवान, उस दिन में तारे नजर आ लेंगे परशुराम के, क्या हो गया, अभी तक बहुत तमतमा रहे थे, सारा शक्ति भगवान ने क्या किया, खींच लिया। तब वो प्रभु को क्या किए, पहचान गए कि तो स्वयं भगवान श्री राम ये स्वयं विष्णु ही हैं। तब उन्होंने क्या किए, परशुराम जी ने भगवान राम से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद कहे कि हे राम, आपने तो मुझे शक्ति विहीन कर दिया है, अब मैं अपने उस पर्वत पे मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मैं शक्ति से उड़ के जा सकता था, अब शक्ति हम जी ने, तो आप मुझे कम से कम इस बाण से वहां तक पहुंचा दे दीजिए जहां मुझे जाके ठहरना है। तब भगवान ने उनको वहां पे भेजा, परशुराम जी गए, अब इधर जो है सब सारा संकट दूर हुआ, अब जितने बाराती थे खुशी खुशी विदा हो ले, अब प्रस्थान किए कहाँ, अयोध्या की ओर। अब आगे कथा कल से बढ़ेगी, अयोध्या की कथा कल से आरंभ हो जाएगी, कैसे बाराती पहुंचते हैं अयोध्या वापस बहुओं के साथ। हरे कृष्णा। आरती करेंगे, अनाउंस करना है आरती श्री रामचंद्र,
तो सभी बाराती अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। उससे पहले क्या होती है, शादी हुई है तो क्या होगी, फीस तो फीस आपका इंतजार कर रही है, लेकिन बस उससे पहले तुलसी आती होगी
6:30 बजे सुबह,
और कल 6:30 बजे कथा आरम्भ होगी। आप सबसे बोलते के समय पर पधार कर कथा का आरम्भ दीजिए। हमारे आज के मान श्री मनमोहन श्याम दास जी हमारे बीच में, हम कल गंभीर से धन्यवाद करते हैं आज के प्रसाद के लिए, और हरि बोल बोल के भगवान धन्यवाद करेंगे। हरि बोल हरि बोल, ये सब खड़े हो जाएंगे आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद
शुरू करें। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भजुम हरण भव भय दारुणम,
श्री रामचंद्र कृपालु भजुम हरण भव भय दारुणम,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
गंधर्प नरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम,
गंधर्प नरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर,
तपतीत मान तरित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम,
पटपीत मान तरित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम,
भजु दीन बंधु दिनेश दानव कैक वंश
दुष्ट दलना निकंदना
कुंद आनंद तंग औषध चंद्र दशरथ नंदन
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन
श्रीराम पुत्र कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
श्रीराम पुत्र कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
आजान भुज शरचाप धर संग्राम चित कर दूसरम
आदान भुज सर चाप धर संग्राम चित कर दूसरम
इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मन रंगन
इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन
हृदय तंग वास करु कामादि हल दल दंगन
मम हृदय कांजनी वास करु कामादि हल दल दंगन
मन जाहि राचहु मिलहि सबल सहज सुंदर सांवर
मनु जाहि राचहु मिलहि सबल सहज सुंदर सांवर
करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करावर
निधान सुजान सिलु स्नेह जान तरावर
इन्हीं भांति गौर आशीष सुनसी चहित हरसी अली
एही भांति गौरी आशीष सुनिशिय सहित हरसी अली
तुलसी भवानी पूजित मुदित मन मंदिर चलि
तुलसी भवानी पूजित मुदित मन मंदिर चलि
राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भयदार
राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्रीराम 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 जय जय राम श्रीराम जय
Oh, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। बोलो बोलाओ एक कोरताल लेके जाना है। ये राग दो इधर ही है ना।
किसे कोरताल लेके कहाँ जाना है
आपको?
मैं करता हूँ।
ना 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 ये एक वो
Thank you.